आपका बेहद शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। मेरा बेटा आज आया और कहने लगा, डैड अपना गिरजाघर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ हम इस गिरजाघर को देखें, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और उसने गुफ्तगू करते हुए कहा, अभी खादम के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर वो अपनी अहलिया की तरह बेहतरीन शख्स हुआ तो यकीनन वो लाजवाब आदमी होगा। हम यहाँ आकर खुश हैं और मैं आज रात की इबादत के लिए पुरउम्मीद हूँ कि खुदा हमारी मदद करेगा और अपनी बरकत हम पर अंडेलेगा। अब जब हम अंदर आए तो मैंने भाई विलियम्स को बोलते सुना। मेरा ख्याल है कि वो रमादा जाने के बारे में कुछ कह रहे थे और मेरा ख्याल है कि इसके मुतल्लक ऐलानात भी कर दिए गए हैं। आमतौर पर वो मेरे आने तक इसकी एहतियात करते हैं और हमें यकीनी उम्मीद है कि इस कन्वेंशन में हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। और मेरा किरदार इसमें ये होगा कि मैं भाइयों से मिलता रहूंगा और लोगों के साथ रफाकत करता रहूंगा और खुदा से दुआ करता रहूंगा कि वो हमें एक दुरुस्त किस्म की तहरीक दे और फिर हम ठीक सीधा रमादा की इतनी बड़ी इबादत में चले जाएंगे। इसलिए हम उस वक्त तक कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो तमाम कलीसियाओं में जाएं। हम बड़ा अच्छा वक्त हासिल करने जा रहे हैं। यकीनन हमें भाइयों के साथ रफाकत करने का शानदार मौका मिलेगा। और अक्सर मुझे सभी जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा मुनाद नहीं हूँ, मैं तो बस एक फालतू पहिए की मिसाल हूँ, लेकिन मेरी खिदमत बीमारों के लिए दुआ करना है। और रात को इबादत में हमारे पास इतना ज्यादा लोगों का हजूम हो जाता है कि हमारे पास मजीद कोई जगह नहीं रह जाती। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर हो सके तो लोगों में कार्ड तकसीम कर दें ताकि उन्हें अंदर बुलाकर उनके लिए दुआ कर सके। लेकिन एक रात इबादत करने से अगर आज रात वो चीज आप हासिल ना कर पाए तो उन लोगों को अगली रात तक के लिए कहीं ठहराना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर रात को लोगों के लिए इस तरह कुछ न कुछ गुफ्तगू करता रहता हूँ और अपनी बसात के मुआफिक यीशु मसीह के जलाल के लिए हर तरह कोशिश करता हूँ, जिससे हम मोहब्बत करते हैं और जिस पर हम ईमान रखते हैं और उसी में हम बाहम रफाकत करते हैं। मेरा ख्याल है कि चंद ही मिनट पहले गली के कोने पर होने वाले हादसे के बारे में आपने सुना होगा। मुझे ये इल्म नहीं हो सका कि वो आदमी जाबाक हो गया या नहीं, या वो कौन था जिसे कार ने टक्कर मारी थी। ये चंद लम्हे पहले की बात है। हम वहाँ रुक गए थे और छोटी सी दुआ की थी। यहाँ से दो ब्लॉक के फासले पर एक शख्स को कार ने पहलू पर टक्कर मारी और वो लुढ़कता हुआ गली के पार दूसरी तरफ पहुँच गया। एक कद्दावर शख्स डका पड़ा था। पुलिस के आदमी वहाँ मौजूद थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल एम्बुलेंस अभी तक पहुँची थी। उन्हें आ जाना चाहिए था। अगर वो टक्कर लगते ही ना मरा हो तो अब तक जरूर मर गया होगा। टक्कर इंतहाई शदीद थी क्योंकि टक्कर इस तरफ हुई और वो शख्स टक्कर खाकर गली की दूसरी तरफ लुढ़कता हुआ गया। आप जानते हैं, बस ये है कि हमें हर लम्हे खुदा की खिदमत में मशगूल रहना चाहिए। हम उस घड़ी को नहीं जानते, हम नहीं जानते कौन सी घड़ी क्या हो जाए। शायद हम समझते हो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं कि ये हो सकता है। बस मेरा ईमान है कि यीशु ने कहा था, तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कौन से लम्हे या कौन सी घड़ी तुम्हें बुला लिया जाएगा। और फिर हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां ना तो हादसात होंगे और ना तकलीफ होंगी। हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए एक ऐसी जगह का वादा मौजूद है। आपको इल्म होना चाहिए कि आज रात हम इसी ख्याल पर बात करेंगे कि हमें एक ऐसे मकाम को हासिल करना चाहिए जो दिखाता है कि ऐसी जगह कहीं मौजूद है, समझे। और हम जानते हैं कि तमाम अक्स और साय जाहिर करते हैं कि अक्स बनाने के लिए कोई हकीकी चीज मौजूद होती है। साया किसी चीज का अक्स होता है। बस अगर कहीं ऐसी जिंदगी मौजूद हो जो साया साबित कर रही हो, तो कहीं पर कोई हकीकी जिंदगी भी मौजूद होगी जिसका ये साया है, समझे। आप दरख्त पर गौर कर सकते हैं, वो कितना खूबसूरत होता है। और क्या आपको मालूम है कि वो क्या चीज है? वो आसमान पर हयात के दरख्त का साया और अक्स है। अब आपको इल्म होगा कि जब खुदा जमीन पर आया, इब्तदा में जब वो जमीन पर चीजें पैदा कर रहा था, तो शायद सबसे पहले एक मेंढक का बच्चा बना हो, जैसा कि साइंसदानों का कहना है। इससे अगली चीज शायद कोई और हो। मैं मसीही अर्तका पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सब चीजें एक ही खलिये से बनी होंगी। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने पहले एक पॉलीवॉग बनाया होगा, फिर उसने मछली बनाई और फिर कुछ और बनाया। बस मैं चीजों की तख्लीक पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एक ही खलिये से नहीं, बल्कि हर बार एक नई मखलूक पैदा होती थी। वो मुसलसल आला इकसाम के जानदार बिल तरतीब बनाता गया और कुछ देर के बाद वो मखलूक बन गई جو خالق خدا کی صورت کی شبیہ کو ظاہر کرتی تھی۔ اب یہ بات اس طرح سچ ثابت ہوتی ہے کہ جب خدا مجسم ہوا تو یہ یسوع مسیح تھا جو ایک انسان تھا، سمجھے، نہ کہ فرشتہ بلکہ انسان۔ اس سے نظر آتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہو، یہ قدیم بائبل ان بیش قیمت جواہرات سے بھری پڑی ہے۔ میں کسی بات کا اندازہ لگا کر اس میں داخل ہوتا ہوں، کیا آپ نہیں؟ اور پھر تمام گرد و غبار کو جھاڑ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسے جواہرات یہاں ایریزونا میں زمین کی خاک سے، کیسے عظیم جواہرات حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہی مقام ہے جہاں سے وہ ملتے ہیں۔ خدا کے موتی بھی خاک ہی سے ملتے ہیں، اور وہ، بلکہ ہم نہایت مبارک ہیں کہ خدا ہمیں یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی بٹی میں سے گزرتے ہیں اور تمام زنگ اور میل ہم سے دور کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ اس کی صفائی کیسے کرتے ہیں؟ بے شک آپ ایریزونا کے لوگ جانتے ہیں، پگھلا کر صاف کرنے کا طریقہ معلوم ہونے سے پہلے لوگ سونے کو کیسے صاف کرتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ اسے لیتے اور اس سونے کو کوٹا جاتا تھا۔ قدیم انڈین لوگ اسے کوٹ کر صاف کرتے تھے اور پھر اسے پلٹ کر مزید پیٹتے ہی جاتے تھے، حتیٰ کہ کوٹ کوٹ کر تمام میل اور زنگ اس سے دور کر دیا جاتا تھا۔ اور انہیں اس وقت علم ہو جاتا تھا کہ تمام فاضل مادے اس میں سے نکل چکے ہیں۔ جب کوٹنے والا دیکھ لیتا تھا کہ اس کا اپنا چہرہ اس سے نظر آ رہا ہے تو وہ جان جاتا تھا کہ یہ صاف ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنی شبیہ اس میں دیکھ لیتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ صاف ہو چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کوٹ کوٹ کر دنیا کی تمام چیزیں ہم میں سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یسوع مسیح کی زندگی کا عکس نظر آئے۔ پھر ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے عکس کو اس وقت تک ہمارے اندر ظاہر کرتا ہے جب ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑتے ہیں جو ہمیں درپیش ہے، اور نمونے کے طور پر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں، اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں۔ اب میں اکثر ہر رات یہ کہتا ہوں، میں نے بھائی کالر ولیم سے کہا، میں نے کہا، بھائی کالر، ان اوپر نیچے والی وادیوں کے لوگ اب مجھ سے دوبارہ کلام سننا پسند نہیں کریں گے کیونکہ میں انہیں رات کو 2-3 گھنٹے بٹھائے رکھتا ہوں۔ بھائی نے کہا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ آئیں۔ اس لیے میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے پھر مجھے مدعو کیا ہے۔ اور اب ہر رات میری بیوی جو اس وقت ٹیوسان میں ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی اور میں نے پوچھا تھا موسم کیسا ہے، اس نے کہا قدرے گرم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ فرض کی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک، ہر رات 10 یا 11 بجے تک۔ میں نے اس سے کہا جب میں ایریزونا کی چھوٹی سی عبادت میں جاؤں گا تو کچھ آرام کر لوں گا، میں ان کلیسیاؤں اور ان بھائیوں کے درمیان جاؤں گا، میں ان لوگوں کو سزا دینے نہیں جا رہا، میں صرف دورے پر جا رہا ہوں اور میں انہیں جوبلی کے گیت گانے کی اجازت دوں گا۔ میں خود بہت محدود رہوں گا اور اپنی تحریروں کو 15-20 منٹ تک رکھوں گا اور آمین کہہ کر گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کیا آپ شیڈول کے مطابق چل رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پیاری، میرا تو شیڈول باقاعدہ تقریباً 3 گھنٹے کا ہے۔ آپ بڑے اچھے ہیں اور بڑے صبر والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا کہ ہم خدا کی طرف رجوع لانا چاہتے ہیں، بس ہم ایک لمحہ کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ اتنے بہترین سامعین میں سے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، اور بالخصوص بیمار اور حاجت مند لوگوں کی خصوصی درخواستیں موجود ہیں، اور میں 2-4 پائیاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بلا شبہ اور بھی بہت سے لوگوں کی اس طرح کی درخواستیں ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی درخواستوں کا اظہار کریں۔ اور اب جبکہ میں دعا کرنے کو تیار ہوں تو میں ان 4 پائیوں کے پاس جا کر ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ جب ہم ہیں تو ہمیں یقین کے ساتھ اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ پھر کچھ وقوع میں آئے گا، ان کا اتنا ایمان تھا کہ وہ یہاں تک آ گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تمام دیگر خیالات کو دور کرتے ہوئے صاف ذہنوں کے ساتھ تیری پاک حضوری میں آتے ہیں تاکہ تو ہماری روحوں کو صاف کر دے، اور ہم اپنے آگے خداوند یسوع کے خون کو رکھتے ہیں، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان برکتوں میں سے کسی کے لائق نہ تھے جو تو ہمیں دیتا ہے، اس لیے مسیح ہماری خاطر مروا تاکہ ہم ان برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور اس نے ہمیں جتا دیا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ تخت کے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند یسوع کے فضل کے وسیلہ سے ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایمینوئل بن کر زمین پر آ گیا اور گناہگار انسان کی جگہ کھڑا ہو گیا، وہ ہماری مانند بن گیا ہو تاکہ ہم اس کی مانند بن سکے۔ خداوند یہ کیسی تبدیلی ہے؟ ہم جو گناہگار اور جہنم کی زندگی کے وارث تھے اور جانتے ہیں کہ مسیح نے آ کر اسے اپنے اوپر لے لیا ہے اور اپنی زندگی کے بہائے ہوئے خون سے ہمارے گناہوں کو دھو کر دور کر دیا ہے۔ خداوند، یہ ہماری سوچ کی حد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر ان سب باتوں کے علاوہ اس نے ایک راہ بھی بنا دی جس سے ہماری نافرمانی دور کی گئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ اس نے وعدہ کیا کہ جب ہم اس کی خدمت کریں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اب اے باپ، آج رات ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف سے بہت سی درخواستیں پیش کی گئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ان میں سے ہر ایک کا لحاظ کرے گا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ اس ہاتھ کے نیچے موجود دل بھی ہے۔ میری التجا ہے خداوند کہ تو اس کلام کو یاد کر جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سنڈے سکول کے سبق کے طور پر اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تاکہ جب ہم اس جگہ سے آج رات جائیں تو ہمارے اندر گزرے وقت کی نسبت جب ہم یہاں آئے تھے باہر جائیں تو ہم محسوس کریں کہ ہمارے دل تیرے زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کا سبب یہی ہے، تاکہ اس ملک میں بیداری آ جائے۔ ہم اگرچہ نہیں جانتے کہ اس کا آغاز کب ہوگا، لیکن خداوند، ہم توقع کے ساتھ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہر انسانی کوشش کو استعمال میں لا رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے کہ بیداری کیسے آ سکتی ہے، جو مردوں اور عورتوں، لڑکے اور لڑکیوں کو مسیح کے نجات بخش علم کی طرف لے آئے۔ ہم اس کلیسیا کے لیے، اس کے لیے بہترین پاسبان اور اس کے کنبے کے لیے اور تمام ڈیکنوں کے لیے، خزانچیوں کے لیے اور ہر اس چیز کے لیے جس کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو یہاں کھڑے رہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خداوند، ہماری دعا ہے کہ خدا کی برکات ان پر ٹھہری رہے، ہر جد و جد پر تیری برکت ہو۔ بخش دے خداوند کہ یہ ایک جگہ سٹیشن کی طرح ہو جہاں اس پوری وادی کے لوگ آ کر آرام حاصل کر سکے۔ باپ، یہ بخش دے۔ بیماروں کے لیے پادری صاحب کی دعاؤں کا جواب دے، نجات کے لیے اس کی تمام دعاؤں کا جواب دے جو انجیل کی حدود کے اندر ہے۔ بخش دے کہ تیری رحمتیں اس پر ٹھہری رہیں۔ اس کلیسیا میں روحانی نعمتوں کی کوئی کمی نہ آنے پائے، یہ ایک مقام بن جائے، تمام علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک مثالی کلیسیا بن جائے۔ خداوند، یہ بخش دے۔ اب اے باپ، جو خواتین آج رات یہاں چارپائیوں پہ پڑی ہیں اور اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی اور اس عبادت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی، آج ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، آج رات ان کو کسی بھی طرح یہاں لایا گیا ہے، اے خدا ان پر رحم کر۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس حالت میں میری بیوی یا میرا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا ہوتا؟ کسی کے ساتھ ان کا ایسا ہی رشتہ ہے، اور میری دعا ہے باپ کے خدا کا فضل اس کی قدرت کے ساتھ آج رات الہی آزادی کے ساتھ نیچے آ جائے اور انہیں ان چار پائیوں سے چھٹکارا دے۔ آج رات کی عبادت کے بعد پھر وہ کبھی ان چار پائیوں پر نہ رہیں۔ بخش دے کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہوں تو ان چار پائیوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ بخش دے کہ وہ قدرت جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا ان کے بدنوں کو دوبارہ نئی صحت اور قوت عطا کرے۔ ہمارے باپ، یہ بخش دے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب اے باپ، شاید ان کی پہنچ میں کوئی شخص نہ ہو جبکہ دوسرے لوگ ایک دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں، میں اس حکم کی یادگاری میں ان کے پاس جاتا ہوں اور اے خدا، میں توقع کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے خط کے ذریعے اطلاع ملے گی کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اس لیے کہ میں یسوع مسیح کے نام میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ Oh. खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। ऐ खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। सब कुछ मुमकिन है। खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। सब कुछ मुमकिन है। खुदावन मैं ईमान रखता हूँ। दोनों खवातीन को कैंसर की गिल्टियां थी। अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर कर सका तो मैं जल्दी जल्दी एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहता हूँ। घर से रुखसत होने से पहले एक आखिरी केस जो मेरे सामने आया था वो बड़ा गैर मामूली था। एक खातून थी जिसका नाम गालबन डायर था। वो औरत, मैं शायद अब उसका नाम भूल गया हूँ, बल्कि ये लुईविल का डॉक्टर था, डायर, जिसका पूरा नाम ए जेम्स, डॉक्टर जेम्स डायर था। वो लुईविल में रसोलियों का और इसी तरह के कामों का स्पेशलिस्ट था। उसकी बेटी ओपन डोर के चर्च में पियानो बजाती थी, जिसका पादरी डॉक्टर कोबल है। ये बहुत बड़ा वो यहूदी तर्ज का इबादत खाना है। वो आदमी खुद तंजीमी कलीसिया यानी चर्च ऑफ क्राइस्ट से ताल्लुक रखता था और वो पूरी अंजील की खुशखबरी पर ईमान लाने के लिए तब्दील हो गया था और वो बड़ा अच्छा आदमी है। और जब मैंने लुईविल में मेमोरियल ऑडिटोरियम में इबादत कराई तो उसकी बेटी ने वहाँ पियानो बजाई थी। जो कुछ वहाँ वाकया हुआ उसे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जाकर अपने वालिद को भी उसके बारे में बताया। वालिद ने कहा ये महज नफ्सियात है, वो लोग पहले ही की तरह बीमार रहते हैं, यूं वो इस पर ईमान ना लाया। बिलाकर उसने बैप्टिस्ट सेमिनरी के तरबियत याफ्ता एक लड़के से शादी कर ली और अपनी कलीसिया से जुदा हो गई। वो लड़का आखिरकार अपने ईमान से हट गया। उसे एक खादम होने की तरबियत दी गई थी, जिस तरह से बैप्टिस्ट लोग खिदमत करते हैं, और बस वो, लेकिन वो मुनारफ हो गया। वो मुनादी करना नहीं चाहता था और वो रॉकफोर्ड इलिनॉय में अपने लोगों के बीच में चला गया। और आखिर उसे यानी जेन को कोई जनाना तकलीफ हो गई। वो मुआयने के लिए अपने वालिद के पास यानी लुईविल में मुआयने के लिए वापस आई और जब उन्होंने उसका मुआयना किया तो पता चला कि उसे चॉकलेट रसोली थी, जो कि जनाना गदूद के अंदर होती है। बड़े ऑपरेशन के जरिए जब उसके वालिद ने वो रसोली निकाली तो गालपन उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर रह गया और आखिरकार उन्होंने उसे गहरे एक्सरे और थेरेपी दी। और जब उन्होंने इस तरह किया और वो घर वापस चली गई तो फिर भी वो बीमारी उसमें थी। تقریباً ایک سال بعد وہ اسے دوبارہ معائنے کے لیے لے کر گئے اور اس کا رحم مکمل طور پر کاٹ دیا گیا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے والد نے ڈاکٹر ہیومنز کے ساتھ، جو کہ جنوبی علاقے کے سب سے بڑے ڈاکٹروں میں سے ایک ہے، اس کا آپریشن کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور کینسر بڑی آنت میں بھی پھیل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے ایکس رے کا طریقہ علاج دوبارہ آزمایا، انہوں نے دیکھا لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، اس لیے اسے اسی ہسپتال میں واپس لے گئے۔ وہ عجابت لانے کے لیے اسے کوئی جلاب بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ کو انیمیا سے صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انتڑیوں میں پانی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تب تک اس کا شوہر مجھ پر تنقید کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ آخر وہ ایک دن ادھر آ گیا اور ایک کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگ گیا۔ میرا بیٹا یہاں ہے اور بھائی سوتمین، جو ایمانتداروں میں سے ایک ہے، یہی موجود ہے، اور تقریباً دو روز تک وہ گرجا گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پر پڑا رہا۔ کیوں؟ جبکہ میں ان دنوں کہیں عبادت کے لیے گیا ہوا تھا۔ واپس آ کر میں مریضہ کو دیکھنے کے لیے گیا، اس کے خاوند نے مجھ سے کہا، اب اسے معلوم نہیں کہ اسے کینسر ہے، اس نے کہا بس جا کر اس سے گفتگو کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ پر جب میں نے مریضہ کو دیکھا تو اس نے کہا، بھائی برہنم، اس نے کہا، کیا میرے خاوند نے الہی شفا کو قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا، میں تو اسے کسی کتاب پر نظر کرنے پر مائل نہ کر سکی، لیکن اب وہ ایک کتاب لے آیا ہے اور اس کے صفحے کے بعد صفحے ہر روز پڑھتا رہتا ہے اور سناتا ہے۔ اور میں نے کہا، جن، میں سب سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، جن، اب ہم گفتگو کریں گے اور ہم دیکھیں گے خداوند کیا کہتا ہے۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، نرس بھی چلی گئی تھی، بس ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر ایک رویا ظاہر ہوئی۔ میں، اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور ابھی اس کے بال سفید نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ بہت بوڑھی دکھائی دے رہی تھی اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، جین، اب تم تو عبادات میں آتی رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں بھائی برہنم۔ میں نے کہا، انہوں نے آپ سے چھپائے رکھا ہے اور مجھے بھی بتانے سے منع کیا ہے، لیکن آپ کو کینسر ہے۔ میں نے کہا، آپ کے باپ یا آپ کے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہ بتاؤں، لیکن جین، آپ کو کینسر ہے۔ لیکن اب چونکہ تم عبادات میں شامل ہوتی رہی ہو، اس لیے میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک رویا کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جین، اب میں تم کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، سمجھے۔ اب اگر آپ حقیقی یقین کرنا چاہتے ہوں تو پھر دیکھیں، یہ خداوند ہے، یہ محض دکھاوا نہیں ہے، آپ اسے دیکھیں، سمجھے۔ اور میں نے کہا، تم زندہ رہو گی۔ اور وہ اس نے کہا، بھائی برہنم، مجھے شروع سے ہی شک تھا۔ اور اس نے کہا، میں نے ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جہاں میرے والد ڈاکٹر تھے۔ اس نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اس نے کہا، میں شروع سے یہی سوچتی رہی تھی اور یہ وہی کچھ نکلا۔ پھر ہم نے دعا کی۔ اگلے روز، یعنی اس سے دوسرے دن، وہ اسے آپریشن کے ذریعے مصنوعی سوراخ کروانے کے لیے لے کر جانے والے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں انتڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور ایک طرف ایک تھیلی لگا دی جاتی ہے، اور جب تک کینسر مریض کو ہلاک نہیں کر دیتا، اس کی انتڑی سے فضلہ تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور جب وہ اسے تیار کر چکے، یعنی وہ اسے آپریشن کی میز پر ڈالنے کے لیے تیار کر چکے، تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، اور اس نے نرس کو بلا کر کہا کہ غسل خانے میں جانا ہے اور اس کی مدد کرے۔ اور جب وہ اندر گئی تو اسے نارمل انداز میں عجابت ہوئی، اور یہ سب کچھ اس کے خاوند کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اور دوسرے روز بھی، پھر انہوں نے اس کا آپریشن نہ کیا، اور پھر دوسرے روز ناشتے کے بعد اسے بالکل نارمل طور پر ایک مرتبہ پھر عجابت ہوئی۔ پس وہ اس کے ڈاکٹر نے فون کیا، اس نے سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں اس میں کینسر کی علامت تک نہیں مل رہی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اے میری بیش قیمت بہنوں، جب میں مسیح کا خادم ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ میں کوئی غلط بات کہوں، اس لیے کہ اس دن میری عدالت کی جائے گی، اور غلط بات کہنے پر مجھے مجرم اور ریاکار ٹھہرایا جائے گا۔ اب جب خداوند کا کلام کھل چکا ہے تو دیکھیں، جیسے خلوص کے ساتھ میں نے جن کے لیے دعا کی تھی، ویسے ہی آپ کے لیے کی ہے۔ ہم بس اس مقام کو یہاں تک لے کر آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایمان کے ساتھ دعا مانگی جا چکی ہے، اس بات سے یہ طے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ अब जिस खुदा ने डॉक्टर डायर की बेटी जीन को शिफा दी थी, मैं नहीं जानता अब उसका नाम क्या है, लेकिन उस आदमी ने पूरी अंजील को गले लगा लिया है। चर्च में जो आखिरी वाज हुआ, उस सारे कलाम के दौरान वो एन यहाँ बैठा हुआ था। उसने हमारे साथ इशारे रुबानी और बाकी तमाम कामों में शमूलियत की। एक बैप्टिस्ट तालब इलम रुलपुस के बपतिस्मे के लिए खुदावंद के पास आ गया था। अब इससे साबित हो जाता है कि खुदा हमेशा खुदा ही रहता है, और उसका बाप जो डॉक्टर था और बड़ा प्यारा इंसान था, लेकिन उसने कभी इस तरह की कोई बात वकूम में आती नहीं देखी थी। अब खुदा का हर काम के लिए एक वक्त है, और ईमान लाने के बायस आप दोनों ईमानदार हैं। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भलाई के लिए आती हैं। आप जानते हैं कि बाइबल बयान करती है सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। अब क्या आपको अय्यूब की सारी आजमाइशें याद हैं? अब खुदा अय्यूब को कोई सजा नहीं दे रहा था, बल्कि खुदा अपने खादम की शहादत दे रहा था। बस उन सब से भलाई पैदा हुई, आप समझ गए। और फिर अय्यूब की किताब तमाम पुश्तों के लिए गवाही की खातिर तहरीर की गई है। अब खुदा भलाई पैदा करने के लिए ऐसा कर रहा था। अब याद रखें, मैंने पूरे दिल से ईमान के साथ दुआ की है। आप इस पर ईमान रखें और फिर देखें, ये हो जाएगा, इसी तरह होगा। बस आप नतीज का इंतजार करें। अब मैं सीधा पैगाम की तरफ रुख करना चाहता हूँ। बहुत से लोग खड़े हुए हैं। आज शाम के लिए मुख्तसर सा पैगाम है, और अब जरा याद रखें, जैसा कि वहाँ रमादा में, यानी रमादा की इस बिजनेसमैन कन्वेंशन में, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे मुनाद आएंगे, इसलिए आप रमादा जरूर जाएं। इस इबादत में शामिल होने की भरपूर कोशिश करें। ज़ियाफ़त वाली रात भाई ओलर रॉबर्ट्स भी शिरकत करेंगे, और अब चूंकि मैं ट्यूसान का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मैं ट्यूसान का ख्याल करता हूँ। हम अगले पीर की शब वहाँ भी एक मीटिंग करेंगे, ठीक है? इसलिए अगर आप करीब हों तो जरूर वहाँ तशरीफ लाएं। आपको मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें पैगाम पेश करना है। इसलिए अगर मुमकिन हुआ तो अगले मंगल की शब, बल्कि अगले पीर की शब, रमादा होटल यानी रमादा इन ट्यूसान में तशरीफ लाएं। और चूंकि हम सब जानते हैं कि फिनिक्स ट्यूसान की सरहद पर वाकया है, आप समझ गए, हम सबको ये मालूम है, बस जरूर आएं और देखें कि पहाड़ी लोग किस तरह बुदोबाज करते हैं। अब हम अपनी अपनी बाइबल में से ज़िक्रिया 14 बाब की 6 और 7 आयत को पढ़ते हैं। मेरी ख्वाहिश है इसे पढ़ो। जिस उनवान पर मैं बोलना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इसकी तलावत करूँ और जो मैं मतन लेना चाहता हूँ।
And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be.
और उस रोज रोशनी ना होगी और अजराम में फल छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी।
Now I wish to draw from this the evening.
इसमें से मैं शाम का पैंबर, मैं जो उन्वान लेना चाहता हूँ वो है शाम का पैंबर, क्योंकि हमारे पास सारा दिन पैंबर आते रहे, और इस दिन के दौरान जिसका खुदा ने जिक्र किया है बहुत से पैंबर आए, लेकिन एक पैगाम को शाम के वक्त आना है। हम आज रात उसी पर गौर करना चाहते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम संडे स्कूल के सबक की तरह इस पर गौर करेंगे। अब हम सब जानते हैं कि ज़िक्रिया ने यहाँ क्या कहा है, क्योंकि उसने यूँ बयान किया है, एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद को मालूम है, न दिन होगा न रात, मगर शाम के वक्त रोशनी होगी। अब हम सब जानते हैं, अगर ये न दिन होगा न रात, तो फिर ये एक धुंधला या अबर अलू दिन होगा। और हम सब ये जानते हैं कि तहजीब ने मशरिक से मगरिब की तरफ सफर किया है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब चीन की है, और तहजीब ने सूरज की पैरवी करते हुए मशरिक से मगरिब की तरफ सफर किया है, और अब हम एन मगरबी साहिल तक आ चुके हैं। अगर हम मजीद आगे जाएंगे तो वापस मशरिक में चले जाएंगे, समझे। इसलिए हम रास्ते के इख्तिताम पर हैं। बहैसियत कलीसिया हम ईमान रखते हैं कि अंजील की बुशारत मुकम्मल हो चुकी है, और हमारा ईमान है कि आखिरी दिनों में, आखिरी चंद सदियों में बड़े बड़े पैगंबर बरपा हुए हैं, और उन्होंने इन अजीम चीजों के लिए जंग की है। लूथर ने ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने पर, वेस्ली ने तकदीस पर और पेंटिकोस्टल ने रूल कुछ के बपतिस्मे पर मुनादी की है। हम ईमान रखते हैं कि इन तमाम उनासर ने बाहम मिलकर जिस्मानी और रूहानी एतबार से बदन को मुकम्मल किया है। जब आम तौर से कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? सबसे पहले पानी का अखराज होता है, फिर अगली चीज खून बह निकलता है और फिर इसके बाद जिंदगी आती है। पहला योहन्ना 5:7 में लिखा है, आसमान पर गवाही देने वाले तीन हैं, बाप, कलाम और रूह कुस, और ये तीनों एक हैं। ये एक है, बेटे के बगैर आपके पास बाप नहीं हो सकता और ना ही रूह कुस के बगैर आपके पास बेटा हो सकता है। देखें, ये एक है। जमीन पर गवाही देने वाले तीन हैं, पानी, खून और रूह, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है। ये एक नहीं है बल्कि एक ही बात पर मुत्तफिक है, समझे? अब आप तकदीस के बगैर रास्तबाज हो सकते हैं, आप रूल कुछ के बगैर तकदीस शुदा हो सकते हैं, समझे? रूल कुछ जान के अंदर सुकूनत करने वाली मसीह की हजूरी है। अब हम देखते हैं जिस्मानी चीजें रूहानी चीजों की तशबीह है, इसलिए कलीसिया अब मुकम्मल बलूगत को रास्तबाजी, तकदीस और रूल कुछ के बपतिस्मे के बाइस पहुँच चुकी है। हम सात कलीसियाई जमानों में से गुजर कर घर पहुँचेंगे। ये खूबसूरत तशबीह है। और अब क्या आप में से किसी ने कलीसिया जमानों पर मेरे पैगामात की टेप सुनी है? आखिरी बार मैंने कलीसिया जमानों का खाका तख्ता स्याह पर बनाया था और आसमानी बाप जानता है कि ये सच है। जब मैंने अपनी अहलियत के मुताबिक इसे मुकम्मल किया, जो कि खुदा की दी हुई तहरीक के बाइस था, तो खुदावंद का फरिश्ता, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, आप में से बहुतों ने इस तस्वीर को देखा है, क्या आपने उस रोशनी को नहीं देखा? वो 300-400 अशखाज के रूबरू कमरे में आया, रोशनी की शक्ल में सीधा दीवार की तरफ गया, बिल्कुल इस रोशनी की तरह, और उसने खुद कलीसिया जमानों का खाका बनाया। हम सब खड़े उसे देखते रहे। हमने उसे पहले कलीसिया जमाने, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें कलीसिया जमाने का खाका बनाते देखा। अब यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो इस बात के गवाह हैं। अगर ऐसा है तो अपने हाथ बुलंद करें। बाइबल कहती है, दो या तीन गवाहों के मुंह से बात सच साबित होती है। जितने लोग वहाँ बैठे थे चिल्ला रहे और ललकार रहे थे। मैंने कहा, यहाँ देखे, आप उसे देखना चाहते थे, अब हर शख्स उसे देख सकता है। दिन के 11 बजे का वक्त था और उस दीवार के साथ वो खड़ा था और कलीसिया जमानों का खाका खींचा। शुरू में रूह कसरत के साथ था और फिर तारीकी इस बात का इजहार है कि रूह को निकाल दिया गया। कलीसिया तारीख दौर में से गुजरी और फिर ये दोबारा वापस आया, जैसे कि मैंने इसका खाका खींचा था। जब वो दीवार पर खाका कशी कर रहा था तो हमने उसकी तस्वीरें भी ली जो दीवार पर लटक रही है, और ये ऐन इसी तरह मौजूद था। इसका मतलब ये होना चाहिए कि खुदावंद का रूह मुतमिन हो गया था कि ये मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि वो पलट कर आया और इसके सच होने को साबित कर दिखाया। इस वक्त हम लोदिकिया की कलीसिया के जमाने में हैं। अमीर कलीसिया जमाना है, जिसके लोग समझते हैं कि वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो नंगे, अंधे और कमबख्त हैं, और इस बात को जानते तक नहीं, समझे? अब ये तमाम तशबियात हैं। अब बिल्कुल वही सूरज तलू हुआ है, जो सूरज मशरिक से तुलू होता है वही मगरिब में ग्रूब होता है। अब आए इस पैगाम का पस मंजर तैयार करने के लिए हम एक लम्हा वक्फ करें। हम जानते हैं कि सूरज यानी SUN निजामे शमसी है, लेकिन खुदा का बेटा यानी SON इलाही आबो ताब और खुदा की रोशनी के साथ मशरिक में आया। अब 2000 साल हो गए हैं और खुदा के हिसाब से, जैसा उसने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जो न दिन होगा न रात, बल्कि एक धुंध आलूदा दिन होगा, मगर शाम के वक्त रोशनी होगी। अब अगर आप गौर करें तो रूहुल कुस पहले मशरकी लोगों पर नाजिल हुआ, इसके बाद कलीसिया के रुकन बनने का और कलील नुक्ता उठाने का दौर आया, वो लड़ाई के हकीर असबाब रह गए, लेकिन फिर शाम के वक्त मगरबी निस्फ कुरा अर्ज पर रोशनी होगी, और अब हम उसी वक्त में हैं। तहजीब मशरिक से एक बहुत बड़े शगाव की सूरत में मुसलसल गुनाह को उठाती हुई चलती रही और आवाज के पटाव की मानिद मगरबी साहिल से टकराई और ये वापस गिरी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये मगरबी कुरा अर्ज पर नहायत ही बुरी जगह है। हर बुरी चीज जो आप सोच सकते हैं इन लोगों में पाई जाती है, यानी गुनाह, बदी, तलाक, बार बार शादी और हॉलीवुड, जो ऐन जहन्नम का घड़ा है, ये ऐन सच्चाई है। मैं बाइबल की हकीकी पाकीजगी पर ईमान रखता हूँ। मैं इस बदकरदारी और गली सड़ी चीज को नहीं मानता जो हॉलीवुड के नाम से हमारे लोगों के आगे बतौर मिसाल पेश की जाती है। میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جس شخص کے اندر خدا کا روح ہوگا وہ اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ خدا کا روح گواہی دے گا کہ اس کے لیے یہ غلط ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب کبھی ہمارے لوگ اپنی عورتوں کو برہنہ کرنے والے لباس کے نمونے حاصل کرنے پیرس جاتے تھے، لیکن اب پیرس والے انہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ سمجھے، ہالی ووڈ دنیا کی پیشوائی کر رہا ہے۔ اب جو بے حیا فیشن ہمارے ہاں ہے فرانس سے بڑھ کر ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچے۔ یعنی وہ شراب کے نشے میں دھت، گالی گلوچ اور اخلاق باختہ جگہ تھی، لیکن اب ہالی ووڈ نے اسے مات دے دی ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے بالکل غیر سنسر شدہ مواد ہے، جس میں گندے مذاق، بیہودہ فحاشی، جس میں ہر چیز کا وزن موجود ہوتا ہے۔ پھر شیطان نے لوگوں میں، جیسا کہ بہت سال پہلے ہم ابتدائی پینتیکوسٹل لوگ اپنے بچوں کو فلم دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن شیطان نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اسے ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دیا۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ اس نے فلم کو گھروں کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ نہایت ہی خوفناک بات ہے کہ دنیا اس قدر بدی کے اندر پھنس گئی ہے، کیونکہ آپ غور کریں کہ یہی تمام کوڑا کرکٹ تہذیب کے ساتھ تیرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہی اگر خداون نے چاہا تو میں انہی دنوں میں سے کسی دن الٹی گنتی پر پیغام پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اب آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا بھی ہمیشہ سے اپنی کلیسیا کے ساتھ کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اب ہم آخری وقت میں ہیں۔ خدا کا شکر ہو، ہر زمانے کو اس کا پیغام اور پیغمبر ملا، خدا نے اس پر نگاہ رکھی۔ حتیٰ کہ ہم کلیسیائی زمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کو ایک پیغمبر ملا، ہر پیغمبر اپنے دور میں موجود رہا، اور جب وہ گزر گیا تو دوسرا پیغمبر آ گیا، اور پھر دوسرا کوئی آ گیا، تو ساتویں کلیسیائی زمانے تک اسی طرح ہوتا رہا۔ ہر ستارہ، ہر کلیسیا کا فرشتہ، ہر پیغمبر اسی طرح آتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری کلیسیائی زمانے میں مکاشفہ 10 باب میں ایک نرسنگا پھونکا جانا تھا، جس سے گرج کی 7 آوازیں سنائی دی گئی، جن کے لکھنے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن کتاب کی پشت کو بند کر دیا گیا۔ کتاب کی پشت پر 7 مورے تھی۔ جب کتاب تحریر کر لی گئی تو اسے 7 مورے لگا کر بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، لیکن لکھا ہے کہ ساتویں فرشتے کے آواز دینے کے زمانہ میں، یوں یہ زمینی فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ آسمان سے اترا، اور یہ فرشتہ زمین پر کھڑا تھا۔ فرشتے کا مطلب ہے پیغمبر، یعنی کسی زمانے کے لیے ایک پیغمبر کا ہونا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس فرشتے کے سر پر ایک دھنک تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا، اب اور دیر نہ ہوگی۔ جب یہ 7 آوازیں سنائی دے چکی، جب 7 گرج کی آوازیں سنائی دے چکی، اور اس نے اس سے کہا، اسے تحریر نہ کر، اس پر مہر کر دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہر کتاب کی پشت پر تھی۔ لیکن جب 7 فرشتہ اپنا پیغام، یعنی اپنے وقت کی نبوت پوری کر چکے گا، تو خدا کا پوشیدہ مطلب پورا ہو جائے گا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بات بائبل کہتی ہے۔ خدا کا بید، خدا کیا ہے، خدا کون ہے، بپتسمے کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے متعلقہ باتیں، اس روز یہ سب مسائل طے ہو جائیں گے۔ ہر زمانے کے پیغمبر کو اس کا پیغام ملا، اور وہ پیغام اس کے اپنے زمانے کے لیے تھا۔ اور یہ قابل توجہ بات ہے کہ ہر کلیسی زمانے میں، اور آج رات ہم پرانے عہد نامہ میں چل کر دیکھیں گے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ جب خدا نے اس زمانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا تو زمانے کے آخر میں وہ ظاہر ہوا، ہمیشہ آخر میں، ابتدائی دور میں کبھی نہیں، بلکہ آخر میں۔ اب جب لوتھر کے زمانے میں تاریکی چھا گئی تو ویسلی آ گیا، سمجھے، اور جب ویسلی کا تقدیس کا دور تاریکی کی کیفیت سے دو چار ہوا تو پینتیکوسٹل زمانہ آ گیا، سمجھے۔ ہمیشہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے نئے پیغام کو پچھلے زمانے کے آخر میں کھولا۔ ہر زمانے میں اسی طرح ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ بائبل میں یہ بات ہر دفعہ دہرائی گئی ہے۔ ہم مقدس نوشتوں میں شروع تا آخر تک دیکھتے ہیں کہ جب کوئی زمانہ ختم ہو رہا ہوتا تھا اور نئے دور کا آغاز ہو جاتا تھا، تو پچھلا زمانہ کمزور ہو جاتا تھا اور نیا شروع ہو جاتا تھا، تب خدا پیغمبر کو بھیجتا تھا۔ اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے لوگوں کو کلام کی طرف واپس بلایا ہے، جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ याद रखें, ये यीशु मसीह का मुकम्मल मुकाशफा है। ना इसमें किसी लफ्ज का इजाफा किया जा सकता है और ना ही कोई लफ्ज निकाला जा सकता है। ये यीशु मसीह का मुकम्मल मुकाशफा है। और किसी बात की यकीन दहानी का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हमारे दरमियान कोई ऐसी बात उठे जो इस मुकाशफा के बरक्स हो तो वह गलत होगी। समझे, ये कलाम की तरफ वापसी है और हमेशा कलाम की तरफ वापस बुलाया गया है। और पाक नविश्तों में हर कहानी के अंदर किसी भी जमाने को वापस बुलाने के लिए खुदा ने हमेशा किसी नबी को इस्तेमाल किया है और ऐसा बनाया कि ये कभी नाकामी से दो चार नहीं हो सकता। खुदा ने हमेशा एक नबी को भेजा। अब खुदा क्यों इस तरह करता है? इसलिए कि बाइबल कहती है खुदा का कलाम नबी के पास आता है, वो कलाम को खोलने वाला होता है। अब मुझे उम्मीद है कि कोई गलत फहमी नहीं हुई। समझे, मेरा मकसद गलत फहमी का शिकार होना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद बुलाहट का वफादार और दयानतदार होना है। हमारी आरजू यही होनी चाहिए। अब खुदा हमेशा एक नबी यानी एक ही इंसान को इस्तेमाल करता है। अगर आप आदमियों के ग्रोह को इस्तेमाल करेंगे तो आप मुख्तलिफ नजरियात पाएंगे। गौर करें तो हर दो आदमियों के नजरियात मुख्तलिफ होते हैं। उसने एक ही वक्त में दो बड़े नबियों को कभी दुनिया में नहीं भेजा। वो एक को लेता है ताकि दूसरा किसी दूसरे वक्त में किसी और पैगाम के साथ उसकी जगह ले सके। लामहदूद खुदा अपने प्रोग्राम को कभी तब्दील नहीं करता। उसने जिस चीज से आगाज किया था वो हमेशा उसी के साथ खड़ा रहता है। यही सबब है कि जो कुछ वो कहता है हम उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो तब्दील नहीं हो सकता। अगर उसने किसी एक आदमी को खुदा पर ईमान रखने की बिना पर निजात दी तो अगला आदमी भी इसी तरह निजात पाएगा। जब खुदा ने एक जगह तैयार की जहां वो अपनी मखलूक के साथ रफाकत करे, तो आदम ने खुद एक रास्ता बना लिया। उसने अंजीर के पत्तों से अपने लिए और अपनी बीवी के लिए लुंगियां बनाई, लेकिन खुदा ने उसे रद्द कर दिया। खुदा ने खुद फैसला किया कि वो किस प्रोग्राम के मुताबिक या किस बुनियाद पर इंसान के साथ दोबारा मेल मिलाप करेगा, और वो था बहाया हुआ खून। और खुदा ने इस तरीके को कभी तब्दील नहीं किया। अब मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट होते हुए हम एक दूसरे से मुसाफा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट होने की बुनियाद का ताल्लुक है तो हमारे दरमियान बहुत फर्क है। मैं बैप्टिस्टों के लिए खींचातानी कर रहा हूँगा तो आप मेथोडिस्टों के लिए, या इसके बरक्स होगा। लेकिन एक बुनियाद है जिस पर तमाम ईमानदार इकट्ठे हो सकते हैं और वो है बहाया हुआ खून। ये चीज है जिस पर हम बाहम मिलते हैं और बाकी सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं। हम किसी एक ग्रोह में इकट्ठे नहीं हो सकते, ये हम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है यही सारी बात है। और खुदा इन छोटे ग्रोहों में मौजूद है, लेकिन लोग, क्योंकि हम मुख्तलिफ हैं, हर शख्स मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ है। कोई भी दो जहन एक जैसे नहीं हो सकते, दो अशखास एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे कि लोग दावा करते हैं। ना ही दोनों की नाकें एक जैसी हो सकती हैं, और अंगूठों के निशान कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। देखे, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ बने हैं, इसलिए हमारे ग्रुप मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन खुदा हमेशा किसी एक फर्द के साथ काम करता है। वो आपके मेथोडिस्ट होने की वजह से आपको नहीं बचाता। वो इसलिए आपको नहीं बचाता कि आप बैप्टिस्ट हैं। वो इसलिए आपको नहीं बचाता कि आप पेंटिकोस्टल हैं। वो इसलिए आपको बचाता है कि उसने आपके साथ शख्सी बर्ताव किया है, और आप इस बुनियाद पर बचाए गए हैं कि आपने उसे कबूल कर लिया है। इसलिए खुदा ने आपके साथ शख्सी बर्ताव किया है। उसने आपकी कलीसिया की तरतीब से आपको कबूल नहीं किया, बल्कि आपको एक फर्द की हैसियत से कबूल किया है। इसलिए जब खुदा अपने नबियों को या अहदनामा के पैगंबरों को भेजता था तो सिर्फ एक आदमी से कलाम करता था, और वही आदमी पैगाम को लाने वाला होता था। दूसरे अशखास उससे वही पैगाम हासिल करके हर तरफ पहुंच जाते थे, लेकिन उनका एक मरकज होता था। खुदा ने हमेशा मरकज कायम किया है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज रात भी उसका मरकज मौजूद है, और बेशक हम सब जानते हैं कि वो रूह कुछ है। अब खुदा का हेड क्वार्टर कोई ग्रुप नहीं बल्कि रूह कुछ है। ये इस घड़ी के लिए खुदा का पैगंबर है। अब चूंकि कलाम हमेशा नबी के पास आता है, इसलिए अगर वो कलाम का सच्चा नबी होगा तो खुदा अपने कलाम को उस नबी के वसीले खोलेगा। अब तमाम जमानों में हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे नबी होते आए हैं। हम पुराने अहदनामा में जाकर देखें कि वो खड़े होते और खुदावंद के नाम से कलाम करते थे, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होता था। खुदा उससे कोई वास्ता नहीं रखता था। खुदा अपने कलाम के अलावा और किसी चीज को नहीं खोलता। किसी भी तरह वो अपने काम को उसी तरह जारी रखता है। समझे, बस आप याद रखें, खुदा सिर्फ अपने कलाम को जाहिर करता है, और एक सच्चे नबी के बारे में आप सिर्फ कलाम ही से बता सकते हैं कि कोई नबी सच्चा है या झूठा। उसको परखने का तरीका सिर्फ यही है। अगर आप गौर करें तो मिकाया के जमाना में 400 अब्रानी नबी थे, अखियत और यहोशुवत के सामने खड़े थे और कहते थे, खुदावंद यूं फरमाता है, चढ़ाई कर और कामयाब हो। बुनियादी तौर पर वो दुरुस्त थे। फिर मिकाया को मंजर पर बुलाया गया, उस शख्स को जिससे वो नफरत करते थे। अब यूं दिखाई देता है कि अगर 400, मेरा मतलब बलाम के नबी नहीं, अब्रानी नबी मुत्तफिक होकर खड़े थे और कहते थे, रामात जलाद पर चढ़ाई कर, खुदा तुझे बरकत देगा और तू कामयाब होगा। वो आदमी रयाकार नहीं थे, वो बिल्कुल रूह की तहरीक से बोल रहे थे। लेकिन उनमें तो फिर क्यों, जब ये मिकाया नाम का आदमी आया तो इसने, जो कि इमला का बेटा था, क्यों उसने उनके बरक्स नबूवत की? अब दूसरे ने हौसला बढ़ाया, लेकिन इसने पुख्ता सबूत पेश किया, समझे? लेकिन वो कैसे जानता था कि वो सच्चा था? अगर आप वहाँ खड़े होते तो आप ये कैसे मालूम करते? इसका फक्त एक ही तरीका था कि उस आदमी के बयान का मुवाजना कलाम के साथ किया जाए। देखे, अब मिकाया ऐन कलाम के साथ था, क्योंकि एक बड़े नबी एलिया ने, जिसके पास खुदावंद का कलाम था, अखियत और एजबल और उन सब पर लानत की थी, समझे? और जिस पर लानत हो चुकी थी, खुदा उसे क्यों कर पलट कर बरकत दे सकता था? गौर करें, इस तरह काम नहीं चल सकता। अब हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम को साबित करता है, और नबी का कलाम, अगर वो कोई नबी हो तो फिर वो कलाम के मुताबिक बोलेगा। एक मुकाम पर बाइबल यूं कहती है, लिखा है, अगर वो शरीयत और सहाइफ़े अंबिया के मुताबिक ना बोले तो उनमें कुछ रोशनी नहीं। फिर वो बुलाता है, फिर वो पैगंबर बुलाए हुओं को बाहर बुलाता है। वो खुदा के कलाम के लिहाज से दुरुस्त होता है और वो साबित करता है कि वो दुरुस्त है। गौर से सुने, ध्यान दे। अब हम कुछ किरदारों को देखेंगे और सुनेंगे। तूफान से पहले के जमाने के लिए, आखिरी वक्त के लिए, नूह खुदा का गवाह था। अब गौर करें कि उसका पैगाम अपने जमाने की तमाम दुनिया के किस कदर बरक्स था। हत्ता के लोग उस शख्स को पागल कहते थे, हत्ता के उसके, लेकिन तो भी उसके पास ऐन खुदावंद का कलाम था। अब खुदा ने कह दिया था कि वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुदा, जब लोगों ने गुनाह शुरू कर दिया तो खुदा नीचे आया और नूह ने आखिरी जमाने का पैगाम पेश किया। ये कब हुआ? ये पैगंबर जमाने के आखिर में जाहिर हुआ। खुदा ने इस नबी को आखिरी घड़ी के पैगाम के साथ भेजा। उस पर हंसा गया, बुनियाद प्रस्त कहा गया, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। वो फक्त अपने ही घराने को बचा सका, ये सच है। किसी ने उसका यकीन ना किया, लेकिन उसके पास आखिरी वक्त का पैगाम था। अब जितनों ने उसे कबूल ना किया वो मुजरिम ठहराए गए, और जिन्होंने उसके पैगाम का यकीन किया वो बचाए गए। खुदा ने उन्हें जिंदगी अता की और वो बचाए गए, लेकिन जो ईमान ना लाए वो हलाक हो गए। अब मैं किसी चीज की तशबीह पेश कर रहा हूँ, गौर करें कि खुदा ने क्यों ये काम तीन मरतबा किया। तीन खुदा का कामिलियत का अदद है। खुदा तीन में कामिल है, जैसे बाप, बेटा और रूल कुछ, रास्तबाजी, तकदीस और रूल कुछ का बपतिस्मा। वो कामिल बन जाता है क्योंकि तीन उसका कामिलियत का अदद है, और पांच फजल का अदद है, और सात, बल्कि 12 प्रस्तिश का अदद है, और 40 अजमाइश का अदद है, और 50 जुबली का यानी खुशी का आदत है। 35 का मतलब है 50, और 40 रोज तक मूसा को अजमाया गया, 40 रोज तक मसीह को अजमाया गया, समझे? इसी तरह बाकी सब तमासिल है। अब खुदा तीन में कामिल होता है। तबाही तीन बार है, एक बार उस वक्त जब नूह कश्ती के अंदर गया, दूसरी बार उस वक्त जब लूत सदूम से बाहर आया। गौर करे, यीशु ने उनका यूं हवाला दिया, जैसा नूह के दिनों में हुआ, जैसा लूत के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। गौर करें, एक अंदर गया, दूसरा बाहर आया, और अगला ऊपर जाता है। जी हाँ, समझे? अंदर जाना, बाहर आना और ऊपर जाना, अब ये खुदावंद की तरतीब है। देखें, यीशु ने इन दो नबियों का हवाला दिया, जैसा नूह के दिनों में हुआ, गौर करें, और फिर जैसा लूत के दिनों में हुआ, यानी जब इब्राहिम नबी था, और वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। देखे, उसने मुड़कर उनका हवाला पेश किया। अब एक और नबी मूसा था जो मिस्री दौर के आखिर में जाहिर हुआ। हम देखते हैं कि जब मिस्रियों ने खुदा के लोगों पर बेकार लेने वाले मुकरर कर दिए, बल्कि ऐसे लोग मुकरर कर दिए जिन्होंने उनको तरह बतरह सताया, तो खुदा अपने लोगों को आजाद कराने के लिए नीचे उतर आया। और तब उनकी तबाही से पहले, कुछ अर्सा पहले, हमेशा की तरह खुदा ने एक नबी को खुदावंद के कलाम के साथ उनके दरमियान भेज दिया। याद रखें, वो नबी खुदा के उस वादा की शनाख्त के साथ आया जो खुदा ने सैकड़ों बरस पहले किया था, बल्कि 400 से ज्यादा बरस पेश तक इब्राहिम के साथ किया था कि उसकी नस्ल गैर मुल्क में परदेशी रहेगी, लेकिन खुदा उन्हें जोरावर हाथ से वहाँ से निकाल ले जाएगा। आप जानते हैं कि जलती हुई झाड़ी में जब मूसा की मुलाकात खुदा के साथ हुई, तो खुदा ने उससे कहा, मैंने अपने लोगों की फरियाद सुनी है और उनकी मुसीबत को देखा है, और मैंने अपने अहद को याद किया है, यानी उसने अपने कलाम को याद किया। याद रखे, वो अब भी अपने कलाम को याद रखता है, समझे? वो कभी नाकाम नहीं होता, वो हर बार उसी तरह करता है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इन्हें अपने जेन में लाकर सोच सके, हत्ता कि आप लोग जो बीमारी में मुब्तला है, आप ध्यान दें, आपके लिए मैंने कहा है कि आप बीमार हैं। अब तवज्जो दें, आप सब लोग ये याद रखें कि खुदा तब्दील नहीं हो सकता, वो ला तब्दील खुदा है। वक्त तब्दील हो सकता है, लोग तब्दील हो सकते हैं, लेकिन खुदा ला महदूद है, वो तब्दील नहीं हो सकता। उसे जरूर कल और आज बल्कि अब तक यकसा रहना है, उसे हमेशा ही एक जैसा रहना है। और अगर हमारा ईमान है कि ये खुदा का कलाम है, तो फिर हम खुदा की कही हुई हर बात का एतमाद कर सकते हैं, समझे? अब आप देख सकते हैं कि खुदा का पैगाम कैसे आता है, वो किस तरह अपने पैगाम को भेजता है। वो उसे तब्दील नहीं करता, उसने हमेशा इसी तरह किया है, उसे हमेशा यकसा रहना है और वो हमेशा इसी तरह करेगा। अब क्या आपको याद आ गया है कि उसने कब ऐसा किया था? बर्बादी से कुछ अरसा पहले, जमाने के ऐन आखिर में, वो अपने लोगों को निकालने के लिए अपने पैगाम को भेजता है, लेकिन लोगों ने उसे हमेशा गड़बड़ कर दिया और उन्होंने अब भी यही किया है। अब मूसा के दिनों में ईमान लाने वाले बचाए गए और गैर ईमानदार फना हो गए। जिस किसी ने खुदा की तरफ से मिले हुए मूसा के पैगाम का यकीन किया, अब उन्होंने उस वक्त तक यकीन नहीं किया था जब तक खुदा ने मूसा को जाहिर न किया और उसने ये साबित न किया कि खुदा का कलाम उसके साथ है। खुदा ने उसे एक नबी बनाकर भेजा था। उसने वहाँ पर जाकर कहा, कल तकरीबन इस वक्त तुम देखोगे कि फलां फलां काम यूं हो जाएगा, और अगले रोज वैसा ही हो गया। ये होकर रहा, खुदा का हर सच्चा नबी जो खुदा के नाम से बोलेगा उसी तरह होगा। यूं होगा कि फलां फलां बात वकू में आएगी, मैं फिरौन के पास जाऊंगा और वो सख्त हो जाएगा, यानी उसका दिल सख्त हो जाएगा। वो हमें भेज देने का वादा करेगा लेकिन जाने नहीं देगा, और ऐसा ही हुआ, समझे? ऐसा क्यों था? तब लोगों ने जान लिया कि वो खुदा का भेजा हुआ शख्स है, और फिर वो देखने लगे कि खुदा ने उसे बरकत दी है, और उन्होंने उसकी तहजीम की, और जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़े बड़े काम वकू में आए। और जिन लोगों ने हंसी और ठट्ठा किया और उसके पैगाम को कबूल ना किया, वो सब गैर ईमानदार मर गए। लेकिन जो लोग ईमान लाए, वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो गए, वो पैगंबर के मसाशुदा पैगाम के नीचे नीचे चले। ये आजादी का एक पैगाम था जिसका खुदा ने वादा कर रखा था कि वो अपने लोगों को उस सरजमीन में पहुंचाएगा जहां दूध और शहद बहता है, और इसी तरह हुआ क्योंकि खुदा ने पहले ही ये कह रखा था। और मूसा आया तो उसने उस जमाने के पैगंबर के तौर पर उसे साबित किया। अब ये बात हमारे लिए बहुत वाज़े है, ठीक है? इससे हमने देख लिया है कि मूसा की शनाख्त ठीक तौर पर हुई थी। फिर जब जमाना तब्दील हुआ, तो शरीयत और फजल का दरमियानी वक्त शुरू हो गया। ये एक ऐसा वक्त था जब मौदा मसीह को जाहिर होना था। हम देखते हैं जिस वक्त में लोगों ने शरीयत को तोड़ मरोड़ कर इसमें इंसान की तमाम बनाई हुई रवायात को शामिल करके इसे किसी के मुतैद कर दिया था, तो वक्त तब्दील होने पर एक और नबी यसू आ गया जो खुदा नबी था। हो सकता है अब आप कहें वो नबी नहीं था, बाइबल कहती है वो नबी था। खुदावन तुम्हारा खुदा मेरी मानिद एक नबी बरपा करेगा शरीयत और फजल के दरमियानी वक्त के तब्दील होने पर। वो खुदा नबी था जिसके मुतालिक खुदा बरसों से खबर देता आया है। जब खुदा मूसा को शरीयत दे चुका तो फिर वक्त की तब्दीली पर, जब उसने ये कह रखा था कि ऐसा होगा, वो फजल के साथ फिर वापस आया और उसने एक नबी को भेजा जिसने इस वक्त के आ जाने की नबुवत की। अब उसने ईमानदारों को जमा किया और गैर ईमानदारों को उस दौर में हलाक कर दिया। वो सब जितने उस पर ईमान लाए निजात पा गए और वो सब जिन्होंने उसके पैगाम का यकीन न किया फना हो गए। ये बिल्कुल वही कुछ है जो नूह के दिनों में हुआ और ये बिल्कुल वही कुछ है जो लूत के दिनों में हुआ और यही कुछ दूसरे जमानों में हुआ और यही कुछ मूसा के दिनों में हुआ और फिर यही कुछ यीशु मसीह के जमाने में हुआ, क्योंकि लोगों ने पैगाम की तहकीर की और वो फना हो गए, लेकिन जो पैगाम पर ईमान लाए वो हलाक नहीं बल्कि वो बच गए। अब कलीसिया के काम का वक्त आ गया है। पहले हम तूफान से कबल नूह के दिनों में रहे, फिर शरीयत के काम का वक्त आ गया और फिर फजल के काम का वक्त यानी कलीसिया का दौर आ गया और अब कलीसिया के काम का इख्तिताम हो रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। अब अगर खुदा ने पहले अद्वार में काम करते हुए इस तरह किया तो हमेशा ला तब्दील होते हुए वो इस दौर में भी उसी तरह काम करेगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो ऐसे करेगा। मैं चंद मिनटों में इस बात को कलाम से साबित करूंगा कि खुदा ने इस तरह करने का कहा था। अब वो खुदा है, अब वो अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता। गौर करें कि उसने पहले अद्वार में किस तरह काम किया था। अब हम कलीसिया के काम के आखिरी वक्त में पहुँच गए हैं। आज रात हमने जो तलावत की है वो ये है, शाम के वक्त रोशनी होगी। हमने बहुत सा वक्त अबर अलूद गुजारा, लेकिन रोशनी को आना था। वही बेटा जिसने उस वक्त आकर काम को तब्दील कर दिया था अब फिर आता है। ये खाक से जलाल में जाने का वक्त है, हम जलाल में दाखिल हो जाएंगे। एक वक्त था जब हम अंदर गए, फिर एक वक्त आया कि हम बाहर आए और इस बार हम ऊपर जाएंगे। समझे? ठीक है, अंदर बाहर और ऊपर, हम आखिरी वक्त की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ जा ही नहीं रहे बल्कि हम पहुंच चुके हैं, हम आखिरी घड़ी में हैं। खुदा ने इस आखिरी वक्त में क्या पाया है? उसने इस आखिरी वक्त में वही कुछ पाया जो उसने दूसरे अद्वार के आखिरी वक्त में पाया था, यानी बेएतकादी। उसने हमेशा यही पाया है। वो जब भी आता है तो वो बेएतकादी पाता है। वो उस प्रोग्राम को देखता है जो उसने लोगों को दिया था। नूह के वक्त लोगों को खुदा के अहकामात का पाबंद रहते हुए कुर्बानियां करनी चाहिए थी, जबकि उसे तरक कर चुके थे। जब खुदा आया तो उसने इस काम को गलत तरीके से होते हुए देखा। यही बात उसने उस वक्त देखी जब वो जमीन पर आया। उसने देखा कि फरीसी और इसी तरह दूसरे लोग शरीयत के साथ यही कुछ कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उनके अंदर इसके लिए कोई खलूस न था। वो इसे किसी पुराने तरीके के साथ मिला रहे थे। वो फक्त कलीसिया में शमूलियत इख्तियार कर लेने को ही काफी समझते थे कि बस यही उनकी जरूरत है। यीशु ने उस वक्त यही कुछ पाया। उसने फिर यही कुछ पाया है, उसे वही कुछ मिला है। लोग तब्दील नहीं होते। बस जब खुदा ने अपना प्रोग्राम भेजा और कुछ लोग ईमान ना लाकर हलाक हो गए, कुछ ईमान लाकर जिंदा रहे। अब पहले दोनों मर्तबा ऐसे ही हुआ है तो फिर अब इस वक्त भी यही होगा। इसे यूं ही होकर रहना है। क्या पैगंबर के लिए हमेशा यही जंग रही है कि वो पुराने को नए से जुदा करे? हमेशा यही जंग है कदीम को जदीद से अलग करने के लिए। पैगंबर को हमेशा जंग करनी पड़ती है। अब इसलिए पैगाम को हमेशा नविश्तों के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ने दूसरे की आमद की खबर दी है। आए अब हम यीशु की मिसाल लेते हैं। पैगाम को शरीयत से फजल में तब्दील करना था, उसके लिए किस कदर कठिन साबित हुआ, अगरचे बाइबल ने बयान कर रखा था। मसीहा आएगा और दायमी कुर्बानी मकूफ हो जाएगी, और हम जानते हैं कि नबियों ने ये नबुवत से बता रखा था। ये काम उसके लिए कितना बड़ा था कि वो इसे सरंजाम दे, लेकिन हम देखते हैं उसने ये कर दिखाया और वही एक था जिसने उसे कर लिया, क्योंकि पाक नविश्तों में यूं ही कहा गया था, लेकिन उस जमाने के ईमानदारों, नाम नहाद ईमानदारों ने उसके साथ हरगिज इत्तफाक ना किया। उन फरीसियों और सदूकियों पर गौर करें, उनकी अपनी अपनी रवायात थी और कोई उन्हें उनसे हिला नहीं सकता था। ये बात थी जिस पर वो ईमान रखते थे। उनकी माँ इस पर ईमान रखती थी, उनका बाप इस पर ईमान रखता था, उनकी दादी और उनका दादा इस पर ईमान रखते थे। लेकिन मूसा ने यू कहा, यानी जिस मूसा ने उन्हें शरीयत दी थी, उसी मूसा ने कहा था कि ये शख्स आएगा, और वो उसे पहचानने में नाकाम हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदा के सच्चे कलाम को रवायात में तब्दील कर दिया था और उसके हकीकी असूल को छोड़ दिया था। उसको उसी तरह होना चाहिए था। गौर करें, हर किसी ने किसी दूसरे के आने की खबर दी थी। हर पैगंबर ने बताया था कि उसके बाद एक और पैगाम आएगा, लेकिन अब लोग हमेशा अपने वक्त ही के पैगाम को मुकरर कर लेते हैं। आइए इसे यहीं पर छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लूथर तक चलते हैं। जब लूथर ने ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने की मुनादी की, तो वो उस कलीसियाई जमाने का यानी सरदीस की कलीसिया का पैगंबर या फरिश्ता था, ठीक है। अब गौर करें, जब उसने मुनादी की, उसने लूथरन लोगों को एक तरतीब दी, तो फिर लूथर का काम फैलता गया। फिलाडेल्फिया के कलीसियाई जमाने में जब वेस्ली तकदीस का पैगाम लेकर आया, तो क्यों लूथरन लोगों के लिए उसकी पहचान मुश्किल हुई और उन लूथरन लोगों ने उसका यकीन ना किया। और जब वेस्ली ने उन सबको पिलग्रम होलीनेस और आजाद मेथोडिस्ट और इसी तरह तकदीस के पैगाम पर मुकरर कर दिया, तो इसके बाद पेंटिकोस्टल पैगाम आ गया। तो फिर क्यों किसी भी मेथोडिस्ट के लिए इस पर ईमान लाना मुश्किल हो गया था? जी हाँ, यकीनन ऐसे ही हुआ। गौर करेंगे, यहाँ तक के नविश्तों के मुताबिक एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की खबर देता आया है। हनूक ने अपने उठाए जाने से पहले आने वाली बर्बादी की खबर दी। खुदा उसे घर ले जा रहा था और वो एक गवाह था। अब्राहम ने मूसा की खबर दी और मूसा ने मसीहा की नवीद सुनाई। देखे, वो एक दूसरे की खबर देते आए। मसीह ने इस वक्त के बारे में बताया कि ये कैसा होगा। आप कह सकते हैं, हाँ भाई ब्रैनम, ओ जी हाँ, उसने बताया था। आए जरा देखे, मैंने यहाँ बहुत से हवाला जात तहरीर कर रखे हैं, उनमें से दो या तीन का जिक्र शामिल करूंगा। आए मत्ती 24 को ले, आए हम मत्ती 24 बाप में देखे कि यीशु ने क्यों कर बयान किया कि क्या क्या होगा और कौमें क्यों कर कौमों के खिलाफ होंगी। लेकिन याद रखे कि वो वहाँ ठहर गया और कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ और जैसा लूत के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। उसने पेशगी बता दिया, उसने पेशनगोई कर दी कि ये बातें होंगी। उसने कहा, जब ये सब कुछ होगा तो अभी खात्मा ना होगा, और बातें की। लेकिन फिर उसने कहा, अब अंजीर के दरख्त से और दूसरे दरख्तों से एक तमसील सीखो, जब उनकी डालियां नरम होती हैं और पत्तियां निकलती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को वाकया होते हुए देखो, तो जान लो कि वक्त नजदीक है, बल्कि दरवाजे पर है। अब क्या आपको देखना चाहिए? अंजीर के दरख्त का पत्तियां निकालना और दूसरे दरख्तों का पत्तियां निकालना, ये एक निशान है, और इसराइल को हमेशा अंजीर का दरख्त कहा गया है। योएल ने भी इसकी नबुवत की थी, जो कुछ फल खोर कीड़े से बचेगा, उसे रस चूस कीड़ा खा जाएगा। लेकिन खुदा ने वादा किया है, मैं फिर बहाल करूंगा। खुदावंद फरमाता है और खुदा यूं ही करेगा। लेकिन इससे पहले कि उसे उसके रूहानी मुकाम पर बहाल करे, गैर कौमों की कलीसिया उठा ली जाएगी। वो एक ही वक्त में दोनों के साथ काम नहीं कर सकता। अब आप कलाम को इस तरह आगे पीछे नहीं कर सकते, समझे? उसने एक ही वक्त में दो बड़े गवाहों को कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसने ऐसा कभी नहीं किया, नहीं। और एक ही वक्त में उसने दो कलीसियाओं को भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। गौर करें, पहले गैर कौमों की कलीसिया का उठाया जाना जरूरी है, फिर यहूदियों के लिए दानियल के 70 हफ्तों का इख्तिताम वाकया होगा। मसीह ने 3.5 साल तक नबुवत की, लेकिन उस ममसू फरमा रवा को 70वें हफ्ते के दरमियान में कत्ल कर दिया गया, और यूं 3.5 साल बाकी बचते हैं। और हम मुकाशवा में दो नबियों को देखते हैं, वो अपनी पोशाक कभी बार बार तब्दील नहीं करता है, जो मुकाशवा 11 में यहूदियों के दरमियान आकर मुनादी करते हैं। अब उस वक्त कलीसिया जा चुकी होगी। अब हम इसराइल को देखते हैं कि कई 100 साल बाद, तकरीबन 2000 साल बाद, वो एक कौम बने हैं, उनकी अपनी फौज है और अपना सिक्का है। इसराइली अपने वतन में है, उनकी अपनी कौमियत, अपना परचम और अक्वामे मुत्तहदा में रुकनियत है, वो एक कौम है। इस वजह से ये सबसे बड़ा निशान है जिस पर अब हम ठीक तरह सोच सकते हैं कि इसराइली अपने वतन में है, और यीशु ने कहा था, ये नस्ल जो इसराइल को अपनी सरजमीन में जाते देखे, हरगिज तमाम ना होगी जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। गौर करें, उसने इस दिन का बयान किया था। मैं एक और हवाला दूंगा, دوسرا تیموتھیس تیسرا باب، پولس نے آخری زمانے کی کلیسیا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خود غرض، مغرور، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنے والے ہوں گے۔ کلیسیا کو عالمگیر سطح پر دیکھیں، وہ خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ بدھ کی رات کو دعائی عبادت میں شامل ہونے کی بجائے گھر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ بیپٹسٹ ہے، وہ پینتیکوسٹل ہے، یقیناً جی ہاں، جی ہاں جناب۔ ہو مغرور، خود غرض، عیش و عشرت کے دل دادا، آپ کلام کو ان کی ناک کے نیچے بھی کر دے تو بھی وہ اس پر نظر نہیں کریں گے۔ افسوس ہے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ آپ عورتوں کو بتا بھی دیں کہ انہیں بال نہیں کاٹنے چاہیے تو بھی وہ بال کٹواتی رہیں گی۔ افسوس ہے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ عہد شکن، الزام لگانے والے، نفس پرست، حق کی تحقیر کرنے والے ہیں، وضع رکھنے والے۔ آپ کہیں گے یہ تو دیری ہے۔ نہیں نہیں، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کی قدرت کا انکار کریں گے، اس قدرت کا جو آپ کو اس افراتفری سے، موجودہ دنیاوی نظام سے نجات دے سکتی ہے۔ وہ اس قدرت کا انکار کرتے ہیں، ایسوں سے کنارہ کر۔ باقی لوگ کچھ بھی کہتے رہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ آپ خدا کے سامنے ایک انفرادی شخص ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ اس سے بے غرض کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اور وہ عورت کیا کرتی ہے، یا یہ آدمی کیا کرتا ہے اور وہ آدمی کیا کرتا ہے، یا یہ مناد کیا کہتا ہے یا وہ مناد کیا کہتا ہے، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اپنی روایات کی وجہ سے اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، ایسوں سے کنارہ کر۔ کیا ہم اسی دن میں رہ رہے ہیں؟ یقیناً ہم اسی میں ہیں۔ آخری کلیسیائی زمانے پر دوبارہ غور کریں۔ روح القدس یعنی خود یسوع مسیح نے کہا، مجھ یسوع مسیح نے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ ان باتوں کی گواہی دے۔ اور مکاشفہ تین باب میں یسوع نے لودیکیا کی کلیسیا کی بات کرتے ہوئے گواہی دی کہ آخری دنوں میں کیا کیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ لودیکیا کی کلیسیا امیر اور نیم گرم ہو جائے گی، اور جب موسیقی کے ساتھ زور سے بجیں گے تو وہ فوراً ناچنے لگے گی۔ سمجھے، یہ سچ ہے، لیکن ایک گواہی اور ایک زندگی کے لیے یہ بالکل واضح ہوگا، وہ اس سے دور رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا، میں کسی بات میں آپ کے احساسات کو مجروح کرنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے خدا کے بہشت کی ایک رویا دیکھی۔ شاید مکمل بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کو سچائی بتائی۔ خدا ہم خادموں کی مدد کرے کہ ان باتوں کو بیان کرنے میں دیانتدار رہے اور سچائی بیان کرے۔ دیکھیں، سرد، بلکہ بائبل کہتی ہے وہ نیم گرم ہو جائیں گے، اور وہ اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ پیغام لوتھر کے لیے کامل تھا، اور اگر یہ فلدلیفیا کے زمانے میں ویسلی کے لیے کامل ثابت ہوا، تو اس کا بولا جانا اور کامل ہونا لازم ہے۔ یہ بولا جا چکا ہے اور یہ لودیکیا کے زمانے کے لیے بھی کامل ثابت ہوگا۔ دولت مند اور کسی چیز کی محتاج نہیں، ہم عمارتیں بنانے میں کروڑوں ڈالر خرچ کر سکتے ہیں، دنیاوی تفریح پر ہم سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں، ہم اعلیٰ ترین گرجے تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے، کیا نہیں؟ یہ پوری کاملیت کے ساتھ بالکل سچ ہے۔ لیکن میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب پیغام ان کے اوپر چھانے لگے گا تو وہ آپ کے طلبگار نہیں ہوں گے، آپ ان کو حواس سے باختہ اور خپتی دکھائی دیں گے۔ آپ کو 50 سال پہلے دنیا میں ہونا چاہیے تھا، سمجھے؟ ہو شاید آپ سوچنے لگے، ایسے شخص کو تو میرا پاسبان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر بھی آپ کا پاسبان ہوگا۔ ایزبل نے کبھی ایلیا کو اپنا پاسبان نہیں مانا تھا، تو بھی وہ تھا، وہ یقیناً تھا۔ وہ ایک مثال بن کر ایک پیغمبر کی حیثیت سے اسرائیل میں بھیجا گیا تھا۔ اب بیش قیمت روح القدس اور خدا کا کلام کلیسیا کے لیے پیغمبر ہے، تاکہ انہیں درست کر کے کلام کی طرف واپس لائے۔ ہم اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ افسوس، دیکھیں، یہ پھر صرف باتیں ہمارے لیے گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی کو گواہی سناتے وقت کہتے سنا، خدا کی بڑائی کرے، آپ کیسے اس کی بڑائی کرتے ہیں؟ اور وہ بھی اس نظام سے پیدا ہو کر۔ کسی شخص نے کہا، جاگو اور دعا کرو کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو ایک آنکھ کھلی رکھے اور دوسری بند، یہ ہے جاگو اور دعا کرو۔ لیکن جاگو کا مطلب ہے خداوند کی آمد کے لیے جاگتے رہنا اور دعا کرتے رہنا۔ دیکھیں، یہ ہے بات کو ادھر ادھر گھمانا۔ پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے کوئی روایت قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اگر خواہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ہو یا نہ ہو، और फिर जो पहला काम होता है, आप जानते हैं, वो ये है कि हमारी पैरवी में एक ग्रोथ तैयार हो जाता है और हम उसे कलीसिया के खास बदन से दूर खींच ले जाते हैं। ये सच है, बजाय इसके कि हम अंदर आए और दुआ करें और मसाइल हल करें और बदन तरक्की करे, हम ऐसे काम करते हैं खास बदन तमीर हो या ना हो। अगर आप सच्चाई को पालें तो फिर सच्चाई के साथ खड़े रहे, ये एन सच्चाई है, लेकिन पहले इसे बाइबल की सच्चाई होना चाहिए। गौर करें, इस लोदिकिया के कलीसिया के जमाने पर अंबिया के अंदर या पलूस के अंदर रुलकुस बोल रहा था, जो कि मसीह था। बोलने वाला पलूस नहीं बल्कि मसीह था। खुदा ने अगले वक्तों में हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर जमाने में यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया। अब्रानियों एक, तवज्जो दे, रुलकुस यानी मसीह, मसीह अंजील का मरकज है, मसीह कलाम का मरकज है, और अगर ये मसीह मरकज है तो फिर खुदा इसका सच होना साबित करेगा। यही सबब है कि आप पेंटिकोस्टल लोग मेथोडिस्टों की तकदीस से आगे हैं, क्योंकि रुलकुस हासिल किया हुआ है, इसलिए आप एन कलाम के मुताबिक हैं। यही सबब है कि आप जो मेथोडिस्ट हैं तकदीस हासिल किए हुए हैं, क्योंकि आप कलाम के मुताबिक होते हैं, लेकिन लूथरन इस बात को कबूल नहीं करते और लूथरन लोग रास्तबाज ठहराए जाने से निजात याफ्ता ठहरे, इसलिए कि आपके पैगंबर ने ईमान से रास्तबाज ठहराने वाली मुनादी की और कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ एहतजाज किया, जो बिल्कुल ही खारिज हकीकत थी, जो सिर्फ कलीसिया पर ईमान रखते हैं, जबकि आप बाइबल की तरफ रुजू लाते हैं और आप बाइबल की सच्चाई को लेकर उस पर कायम रहते हैं। फिर वेस्ली एक और सच्चाई लेकर आया और उसी पर ठहर गए। इसके बाद पेंटिकोस्टल एक और सच्चाई के साथ आए और वो उस पर ठहर गए। अगर आप उस बात पर ठहर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो दुरुस्त है, तो आप सारी चीज को जो कि सच साबित हो गई है क्यों कबूल नहीं करते? सारे कलाम पर ईमान रखे। अब जब हम इन पैगंबरों को देखते हैं तो हम जान जाते हैं, हम मसीह को देखते हैं जो कि अजीम खुदा नबी था। उसने आखिरी दिनों के बारे में पेशनगोईयां की कि ये बातें होंगी। ये क्या कर रहा है? ये फसल के वक्त का तारुफ है, ये फसल की कटाई के वक्त का तारुफ पेश कर रहा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। क्या आप समझ गए हैं? अब ये बातें आखिरी दिनों में होंगी। हम जानते हैं हम किस किस्म की फसल की तलाश कर रहे हैं। हम ऐसी कलीसिया की तलाश में हैं जिसके अंदर कभी रोशनी थी, लेकिन हम इससे दूर हट गए हैं और दुनिया की खूबसूरती को अपना लिया है जो महज पॉलिश है। क्या ये सच है? हम दूर होते गए, हर तरह के रुकन शामिल करते गए और हर तरह के लोगों को बपतिस्मे देकर उन्हें पेंटिकोस्टल बनाते रहे। पानी किसी को बचा नहीं सकता, बचाना यीशु मसीह के खून ने है। पानी के अंदर जिंदगी नहीं है, जिंदगी खून के खलिये के अंदर आती है। वो तकदीस को लेकर उस जिंदगी को साफ करती है, उसके अंदर से गुनाह की ख्वाहिश को मार डालती है और फिर रूल कुछ उन साफ नालियों के अंदर आकर उसे काम पर यानी खिदमत पर लगाता है। मजबे ने खून की नाली को पाक किया, लेकिन फिर मामूरी ने उसे खिदमत पर लगाया। ये खिदमत के लिए अलग किया गया, अब इसे खिदमत पर मुकरर करना है और रूह कुछ कलीसिया को खिदमत पर मुकरर करता है। मुझे ये छोटा सा गीत पसंद है, वो उस बाला खाने में जमा होकर उसके नाम से दुआ करते रहे, उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा मिला और खिदमत के लिए कुवत मिली। जी हाँ, और बाकी गीत में आता है, जो कुछ उसने उस रोज उनके लिए किया वही कुछ वो आपके लिए भी कर सकता है। यकीनन फसल और अंबिया। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे जहां हम मसीह पर रुक गए थे। यसाया नबी ने क्यों कर गवाही दी और आखिरी जमाने के मुतल्लक नबूवत की? उसने कहा सब दस्तरखान कैसे भरे पड़े हैं और पूरे के पूरे बदन गंदगी से भरे पड़े हैं। क्यों आजकल के मर्द और औरतें पाक इशा भी लेते हैं और दो दो या तीन तीन बीवियां या शोहर रखते हैं? ये सच है। सिगरेट भी पीते हैं और वो हर किस्म के बुरे काम करते हैं, गिरजाघर में आते हैं और पाक इशा भी लेते हैं। अब मैं इससे कुछ और नीचे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जरा ख्याल करूँगा, शायद ये दुरुस्त ना हो। मैं जो कुछ कहने लगा था मैंने महसूस किया है, मुझे रोका गया है, लेकिन मैं बल्कि आप इन सत्रों में खुद पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक बातें क्या हैं? अब हम जिन बातों को होते देख रहे हैं और कौन, चार या पांच साल पहले साइंस ने ये कहा, आधी रात होने में 3 मिनट बाकी है। इसराइली अपने वतन में है, कलीसिया लौदीकिया के अंदर है। ओ मेरे खुदाया, हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये क्या मामला है? हम शाम की रोशनी तलाश कर रहे हैं। ओ मुझे फिक्र है कि अगर ये रोशनी आ जाए तो क्या हम इसे पहचान लेंगे, या ये हमारे सरों पर से उसी तरह गुजर जाएगी जैसे गुज़िश्ता ज़मानों में हुआ। उन्हें उस वक्त इल्म हुआ जब ये बहुत दूर जा चुकी थी। आपको याद होगा कि उन मजहबी लोगों ने उन नबियों को कत्ल कर डाला जो उनकी तरफ भेजे गए थे। यस्सु ने इसी तरह कहा था। उसने कहा, ऐ रयाकारो, उसने कहा, तुम नबियों के मकबरों को संवारते हो और उनकी कब्रें बनाते हो जबकि तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। रोमन कैथोलिक कलीसिया को देखे जो सेंट पैट्रिक के मकबरे को संवारते हैं और जॉन ऑफ आग के मकबरे को संवारते हैं। उन्होंने उस औरत को जादूगरनी करार देकर आग से जलाकर मार डाला, इसलिए कि वो रूहानी थी, उसने रोयाएं देखी थी। उन्होंने उसे जादूगरनी कहकर जला डाला। 200 साल बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो मसीह की खादमा थी। तब उन्होंने कफारे के लिए उन काहिनों की लाशें निकालकर दरिया में फेंक दी। लेकिन उस दिन के दौरान जिसमें से कलीसिया गुजर रही थी, वो पहचान ना सके कि वो कौन थी। इसी तरह ये रोशनी लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी और वो इसे पहचान ना पाएंगे। यीशु जब तक मर कर दफन होकर दोबारा जीना उठा, वो जान ना सके कि वो खुदा का बेटा था। क्या पत्रस ने पेंतेकोस्त के दिन उनको इल्जाम ना दिया कि ऐ लोगो, तुमने नदानी के हाथों से जिंदगी के मालिक को बेशरा लोगों के हाथों से मसलूब करवा कर मार डाला? हो, उसकी आमद की सुर्ख बत्ती का सिग्नल चमक रहा है। आमीन, हम आखिरी घड़ी में हैं। आमीन, ये सुर्ख बत्ती हर तरफ रोशन है और हर तरफ दीवार पर एकाबोध लिखा हुआ है। वक्त का खात्मा आ गया है, वक्त खत्म हो रहा है। साइंस अपने इंतहा तक पहुंच चुकी है, ये सच है। अब उन्होंने ऐसी चीज तैयार कर ली है जिससे सारी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं और हर कोई एक दूसरे से खौफजदा है। लोग आखिरी घड़ी में पहुंच चुके हैं। तहजीब इस मकाम पर आ चुकी है जहां लोग, यानी चोटी अब पीछे की तरफ लहरा रही है। लोगों की हरकत मौजब लोगों की सी नहीं है। क्या आप किसी ऐसे आदमी का तस्वीर कर सकते हैं जिसकी दाढ़ी लटक रही हो और उसके पहलुओं का गोश्त उसकी शरीरों पर लटक रहा हो, लेकिन वो नौ उम्र लड़का बनना चाहता हो और उसका रुख स्कूल के सहन की तरफ हो? अगर दुनिया में अभी और दुनियावी जहानत का आना बाकी है तो फिर इससे आगे वो कैसी होगी? और वहाँ से वो 14 साल की लड़की को लेकर वो दोनों बाहर गली में चले जाते हैं। आज मैंने अपने होटल में एक माँ औरत को लेटे हुए देखा जिसका लिबास न काफी था और कारतूस वाली एक बंदूक को डांट लगा रही थी और उसका खावत भी ऐसे ही लिबास में था। सर्द हवा में वो लेटे हुए थे। उनका ख्याल है कि उनका जिस्म बहुत खूबसूरत है जिसे वो नमाया करना चाहते हैं। क्या आप महसूस नहीं करते? ये शैतान की सिफत है, ये सच है। कोई शौर से खाली शख्स ही अपने बदन को बेपर्दा कर सकता है। बदरूहों के लश्कर ने ऐसा किया क्योंकि वो शख्स पागल था। गौर करें, अब हमने इसे ये कहकर कबूल कर लिया है कि ये स्टाइल है और जदीद और मॉडर्न कहकर इसे कबूल कर लिया है, लेकिन हम इसे शैतान कहते हैं। मैं बाइबल से साबित कर सकता हूँ कि ये शैतान है। शैतान के कब्जा में होना या बदरू गिरफ्तार होना, ये मजबूर होना नहीं है बल्कि उसका कब्जा होता है और वो लोगों के अंदर होता है, ये सच है। क्या आप उनको ये बताएंगे? वो बिफर जाएंगे। वो इससे कोई तल्लुक नहीं रखना चाहते। नहीं जनाब, उनके अपने नजरियात हैं, क्योंकि वो अपने मुर्दा खाना में जाते हैं। वो इस पर कभी उन्हें मलामत नहीं करते। स्कूलों और कलीसियाओं में जिस्मानी कशिश को नमाया किया जाता है, लेकिन पादरी साहब इस पर मलामत करने से खौफजदा है। बहुत कम कोई ऐसा करता है। अगले रोज मैंने एक आदम को ये कहते हुए सुना। वो कह रहा था, जब आंखों पर लगाने के लिए नीले रंग का वादा और होंठों के लिए सुर्खी ऐजाद की गई, तो इससे दुनिया खूबसूरत हो गई। अगर कोई अंजील का खादम पुलपट पर खड़ा होकर इस तरह का बयान दे तो उसे कलवरी तक जरूर जाना चाहिए। ये सच है, ये एन सच्चाई है, क्योंकि बाइबल इस फेल को मुजरम ठहराती है। और एक पेंतिकोस्टल ग्रुप ने एक बहन को जो उनके यहाँ रोती हुई आती थी, उसने अपने लंबे बाल पुष्प की तरफ बढ़ा रखे थे, उससे कहा, आप अपने फालतू टायर से हवा निकाल सकती हैं। उससे कहा, क्या आपको अपने बाल काट देने चाहिए? क्योंकि बाइबल कहती है कि औरत, जैसा कि यशायाह 5 बाब में, वो चांद की तरह गोल टायर रखते हैं। अब बाइबल किस तरह एक औरत को एक खिलाफ मामूल काम करने को कह सकती है? जब वो अपने बाल काटती है तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहती। वो साबित करती है कि वो अपने सर की बेहुर्मती कर रही है, और फिर वो लंबे बाल आप बाइबल से इस तरह की बात क्यों कर कलवा सकते हैं? ठीक है, तो फिर हमारी पैंती कोस्टल खवातीन को क्या हो गया है? आपने टेलीविजन बहुत ज्यादा देख लिया है, आपने दुनिया को बहुत ज्यादा देख लिया है, और अब खुदा के कलाम में आपकी दिलचस्पी नहीं रही। अब बाइबल ने ये कहा था, ये वही बात है जो बाइबल ने बताई थी। अब ये मेरा नहीं बल्कि बाइबल का बयान है। ओ जिस्मानी कशिश, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, एक दिन मैं छोटी निकरे पहनने वालों पर बात कर रहा था कि एक खातून ने मुझसे कहा, बोली मैं तो तंग गाटी वाली ढीली पतलून पहनती हूँ। मैंने कहा ये भी गलत है, ये बाइबल कहती है, खुदा तब्दील नहीं हो सकता। आप कहते हैं ये बैप्टिस्ट है, ये पेंटिकोस्टल है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये सच है, ये सच्चाई है। लेकिन मसला क्या है, मामला क्या है? किसी ने कहीं से काउंटी सलाख गिरा दी है। मेरा एक बुजुर्ग खादम ये गीत गाया करता था, हम सलाखें ढीली कर देते हैं, हम सलाखें ढीली कर देते हैं, हम गुनाह के साथ समझौता कर लेते हैं, हम सलाखें ढीली कर देते हैं, बेड़े बाहर निकल जाती है और बकरियां अंदर आ जाती है। ये क्या मसला है? जब आप रकावटी सलाखें यानी खुदा के कलाम की सलाखें ढीली कर देते हैं, याद करें कि इब्तदा ही में खुदा का प्रोग्राम था कि अपनी कलीसिया की अपने कलाम से कलाबंदी करे, और जब हवा ने दलील देते हुए कहा, अच्छा अब क्या ये माकूल दिखाई नहीं देता, मैं पहले की तरह ठीक जिंदगी गुजार सकती हूँ, और उसने ऐसा कर लिया और उसने हमेशा यही किया। यही वजह थी कि औरत को मुनादी करने से मना कर दिया गया। देखे उसने सलाख गिरा दी, ऐसा कि कलीसिया इसकी जड़ पेंटिकोस में डाली गई थी और यही इसकी जड़ है। इसके लिए कोई नविश्ता नहीं है, समझे? अब फिर आप क्या करते हैं? आपको वही अंबार मिलता है जो पहले अदन में मिला था। अब गौर करें, फिर जब हम कलाम की तरफ आते हैं तो इसके मुतल्लिक कहते हैं कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि कर सकता है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ। मैंने सांप की नस्ल पर पैगाम दिया तो बहुत से नाराज हो गए। मैंने कुछ लोगों से कहा कि आए और रूबरू मुझसे बात करें, लेकिन वो नहीं आए। शिकागो में थोड़ा ही अरसा हुआ कि उन्होंने समझा कि वो मुझे किसी बात में पनसा लेंगे। आपके पास इसके टेप मौजूद है। उन्होंने पूरी मिनिस्ट्रल एसोसिएशन ऑफ शिकागो को बुलाया हुआ था और वहाँ भाई टॉमी हिक्स और भाई कार्लसन भी मौजूद थे। उससे दो रातें कबल खुदावर ने मुझे रात को जगाकर कहा, चल उस खिड़की के पास खड़ा हो जा। मैं चला गया और वहाँ तूफान था। खुदावर ने फरमाया, अब उन्होंने तेरे लिए एक जाल तैयार किया है। उसने कहा, इस रास्ते में तू खौफजदा ना होना, तू जाना मैं तेरे साथ हूँ। अब ये मैं खुदावंद के नाम से कह रहा हूँ, आप उनसे पूछकर मालूम कर सकते हैं। ये टेप पर मौजूद है जो कि पेश की मुझे बता दिया गया था। उसने कहा, अब तू जाने से मत डर बल्कि जाकर खड़ा हो जाना, और कहा मैं तेरे साथ हूँ। और अगले रोज मैं वहाँ के सरबरा भाई कार्लसन से और टॉमी हिक्स से मिला, और खुदावंद ने मुझे बताया था कि मेरी उनसे मुलाकात होगी और वो मुझे नाश्ते के लिए टाउन एंड कंट्री नामी जगह ले जाएंगे। मैं दर हकीकत वहाँ जाकर बैठ गया। मैंने कहा, भाई हिक्स आप डॉक्टर ऑफ डिविनिटी हैं और हम शिकागो में खादमों के बहुत बड़े इज्तम के सामने जा रहे हैं, आप मेरी जगह जाकर वहाँ क्यों नहीं बोलते? मैंने तो आपके बहुत से काम किए हैं, मैं जरा उसे आजमा रहा था। उसने कहा, ओ भाई ब्रहनम मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अच्छा तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा, ओ भाई ब्रहनम मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो इस पर नहीं ठहरेंगे। भाई कोल्सन ने भी कहा, नहीं वो नहीं ठहरेंगे। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं क्यों? मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वजह आप है बल्कि आप दोनों जानते हैं कि उन्होंने मुझे फंसाने के लिए कुछ सवाल तय कर रखे हैं। और फिर मैंने कहा, आप ये भी जानते हैं, अब ये टेपर मौजूद है, अगर आप टेप लेना चाहते हो तो वो हमारे पास मौजूद है और आप इन तमाम आदमियों को जानते हैं। बस मैंने कहा, कल शब मैंने एक रोया देखी थी कि आज सुबह हम यहाँ बैठेंगे और टॉमी इसे रद्द कर देगा। मैंने कहा, अब देख ले, आपने होटल का कमरा किराए पर लिया हुआ है? उसने कहा, हाँ इसका किराया अदा हो चुका है। भाई कोल्सन ने कहा, जी हाँ लेकिन आप उसे रख नहीं सकेंगे, ये खुदावन यूं फरमाता है। क्यों? आपको किसी और जगह जाना पड़ेगा जो कि सब्ज रंग का कमरा है। हम एक ब्राउन रंग के कमरे में जाएंगे, मैं एक कोने में बैठा होऊंगा, डॉक्टर मीड मेरी दाहिनी तरफ बैठे होंगे और वो बुजुर्ग सियाफाम और उनकी अहलिया मेरी बाईं तरफ बैठे होंगे। ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरह होगा। और मैंने कहा, आप साथ आए और बस देखते जाएं। आपने खुदा को बीमारों को शिफा देते देखा है, एक बार उसे जंग करते भी देख ले। मैंने कहा, वो अजीम और आलीशान है। मैंने कहा, आप सवालों को देखते रहे और फिर देखे कि उनका जवाब कैसे दिया जाता है। जब उस सुबह हम वहाँ पहुँचे, और अगर आप वो टेप लेना चाहें जिम आपने उसे हासिल किया हुआ था, क्या आप इसे नहीं लाए? وہ یہاں موجود ہے، وہ موجود ہے۔ عبادت کے بعد اگر آپ چاہیں تو وہ ٹیپ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے خلاف آپ کے پاس کیا ہے ساتھیو؟ آپ کو کیا مشکل پڑ گئی ہے؟ بھائی کولسن نے کہا، ٹھیک ہے، بھائی برینم نے 2 روز پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں ہوں گے اور وہ کمرہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ وہ جگہ انہیں مہیا نہ ہو سکی کیونکہ کسی موسیقی کے گروپ نے اسے حاصل کر لیا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس کا کرایہ وصول کر چکے ہیں، اس لیے بزنس مین کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور شاید آپ نے وہ سن رکھا ہو، بس بھائی ولیمز بھی یہاں موجود ہے۔ اور اس نے کہا، بھائی برینم نے مجھے پوری طرح بتا دیا تھا کہ کون سا شخص کہاں بیٹھے گا اور مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوگا۔ اس نے کہا، ایک بات ہے، اس نے کہا، شاید ہم سب بھائی برینم کے پیغام پر اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن اس نے کہا، ہمیں ایک بات تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ اسے بیان کرنے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، وہ بالکل بے خوف ہے، اور کہا، اب بھائی برہنم آپ خود بیان کریں۔ میں نے کہا، اب اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی بات پر جو میں نے کہی ہو بائبل لے کر میرے پاس کھڑا ہو جائے۔ اور وہ گرو ایسا خاموش ہو گیا جو آپ نے کبھی بھی نہ سنا ہو۔ میں نے کہا، پھر اگر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے تو میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ جی ہاں بھائیو، میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن ہمیں بائبل کے حقائق کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، آپ ان عورتوں کی مخالفت کیوں نہیں چھوڑتے؟ او جی ہاں، کیونکہ آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے ایک نبی ہیں۔ میں نے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ اس نے کہا، لیکن لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ان عورتوں کی بات کیوں ترک نہیں کر دیتے؟ اور کہا، آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ انہیں لباس کیسا پہننا چاہیے، بال نہیں کٹوانے چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے، آپ یہ سب کچھ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ انہیں یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ وہ نعمتیں حاصل کریں اور خدا کے جلال کے لیے کچھ کریں؟ میں نے کہا، میں دنیا کو الجبرا کیسے پڑھا سکتا ہوں جب تک انہیں اپنی اے بی سی نہیں آتی؟ یہ سچ ہے، آپ کو پہلے بنیاد کے پاس آ کر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اب ہم پر رحم کرے۔ جی ہاں جناب، ہم یہاں آخری گھڑی میں ہیں، سرخ بتی جل رہی ہے، خداوند کی آمد قریب ہے۔ جی ہاں جناب، غور سے سنیں، آخری زمانے کے پیغام کی آخری زمانے کے حالات سے مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ جتنا دور چلے گئے ہیں، پیغام کو چاہیے کہ انہیں واپس لائے۔ ہمیشہ آخری زمانے کا پیغام آخری زمانے کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام نوشتوں میں اسی طرح ہے۔ اس مرتبہ بھی اسے لوگوں کو اصل کلام کی طرف واپس بلانا ہوگا۔ او میرے خدایا، جیسے دیگر پیغمبروں نے اپنے وقت میں کیا، یہ پیغام بھی اسی طرح سے کرے گا۔ اس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، خدا نے اپنے کلام میں اس کا وعدہ کیا تھا۔ ملاکی 4 باب میں کہا گیا تھا، یہ اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا اور ہم اسی دن میں رہ رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، رہنماؤں کا ایک گروہ لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کا زیادہ قصور نہیں، کیونکہ لوگوں کو الجھن میں رہنما ڈالتے ہیں۔ اب آئیں، آپ کہہ سکتے ہیں، او بھائی برہنم، کیا ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ایک منٹ ٹھہرے، ہم اسے نوشتوں کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نوشتوں میں سے نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنی عقل کے الفاظ، روح کی تحریک سے خالی اپنی پیشوائی میں وہ دنیاوی عقل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان میں جو ذہین فطیر لوگ ہیں وہ ایسی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شیطان بھی اس طرح کا کام بہت عقل سے کرتا ہے؟ خیر، کیا اس نے یسوع کے پاس آ کر بحث نہ کی، حتیٰ کہ کلام کے حوالے بھی پیش کیے؟ اس نے یہ کیا، وہ بہت ذہین ہے، لیکن یسوع نے اس کے ساتھ بحث نہ کی، بلکہ اس نے کہا، یہ بھی لکھا ہے، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ جی ہاں، روح کی تحریک سے خالی پیشوا۔ جب موسیٰ کو خدا نے پیغام دے کر بھیجا تھا تو ان دنوں میں کورا پر غور کریں، کورا اور داتن نے کچھ سوچا، موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، اب ذرا ایک منٹ ٹھہر، تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تیرا خیال ہے کہ تو ہی ساحل پر کی واحد کنکری ہے یا تالاب کی واحد مرغابی ہے، صرف تو ہی اکیلا ہے، ہم تجھے بتا دینا چاہتے ہیں، اور بھی مقدس لوگ موجود ہیں۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مقدس نہیں ہے، لیکن اسے اختیار ملا ہوا تھا جسے اس کو پورا کرنا تھا، لیکن وہ ایک گروپ منظم کر کے موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور خدا نے اس سے کہا، جا وہاں دروازے پر کھڑا ہو جا۔ ان آدمیوں کے ہاتھوں میں بخور تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس باخور نے کیا کیا تھا؟ خدا نے زمین کا منہ کھولا اور وہ سب کو نگل گئی۔ انہوں نے مذبح کی آگ اپنے بخور دانوں میں بھر لی تھی۔ بخور میں آگ ڈالنے کا بنیادی کام کر لینے کے باوجود بھی وہ پیغام کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ خدا نے کہا، موسیٰ، میں تجھے اس کام کے لیے بھیجتا ہوں، ان کو یہاں آگے لے آ۔ دیکھیں، وہ اسے پہچان نہ سکے۔ موسیٰ ان کے سامنے مضبوطی سے کھڑا رہا، جیسے ایلیا نبیوں کے گروہ کے سامنے مضبوطی سے عین کلام کے ساتھ قائم رہا تھا۔ یہی بات آپ پینتیکوسٹل لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو باقی دنیا سے الگ کر کے مضبوطی کے ساتھ کلام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ واپس اسی چیز پر نہ جائے جس سے آپ نکلے تھے، اور اسی کی طرف پھر مائل نہ ہو۔ کلوری سے اپنے لنگر کو مت کاٹے، خدا کے کلام کو تھامے رہے، کیونکہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا، اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب داتن اور اس کے فریقوں کا خیال تھا کہ دوسرے آدمی بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ انسان کی ذہانت تھی جو خدا کے منصوبے میں اپنے نظریات شامل کرنا چاہتی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، انسان کی ذہانت خدا کے کلام میں اپنے نظریات شامل کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ کام نہ کرے گی، یہ کام نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے بھی کبھی اس نے کام نہیں کیا، اور نہ آئندہ کبھی کرے گی۔ یسوع کو دیکھیں، جب وہ وہاں کھڑا تھا تو اس نے کہا، تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے عین وہ کام نہیں کیے جو نوشتوں میں کہے گئے تھے کہ میں کروں گا؟ میرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو پھر میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں ان کاموں کو کرتا ہوں اور تم میرا یقین نہیں کرتے، تو ان کاموں کا یقین کرو جو میرے گواہ ہیں، عین سچ ہے۔ انہوں نے اس کا یقین نہ کیا، وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے۔ شاید ان کا یہ مقصد نہ ہو، اور وہ غلطی پر نہ ہونا چاہتے ہو، ان کا ایسا مقصد نہ ہو۔ میں نہیں مانتا کہ لوگ غلطی پر ہونے کا مقصد رکھ سکتے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی تنظیمی کلیسیاؤں میں بڑے بہترین لوگ دیکھے ہیں، اور میں نے بہترین لوگوں کو پایا ہے، لیکن یہ اس طرح ہے جیسے ایک وکیل نے یہاں جو آیا تھا اور ریڈیو پر کہا تھا، عجیب بات ہے کہ مذہبی آدمی پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان وقتوں کو آتے دیکھ لیتے ہیں، اور راستباز لوگ دنیا کے گناہوں پر غضبناک نہیں ہوتے، اور جب ایک وکیل کھڑا ہو کر اس طرح کہہ سکتا ہے، اور عوام کس طرح اپنا پیسہ چڑیا گھروں اور پارکوں اور دوسرے کاموں پر خرچ کر رہی ہے، لیکن مشنریوں کے پروگراموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتی کہ انجیل کی خوشخبری دنیا تک پہنچے، جبکہ مشنریوں کے پیٹ بھوکے ہیں اور پاؤں ننگے ہیں۔ ہللویہ! کوئی تنظیم ان کی پشت پناہی نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کے لیے کوئی چیز مہیا کر دیں تو ان کو کیا ملے گا؟ رسومات کا ایک پلندہ۔ کیا ایک حقیقی اور سچا مشنری جس کے ساتھ نشانات ہو کسی دوبن پر انحصار کرے گا جو اس کے لیے چند سکے جمع کر سکے؟ غور کریں، یہ بات ہے۔ شاید وہ کافی کچھ کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ خیر، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یسوع نے کہا تھا وہ اندھے ہیں۔ یاد کریں، یاد رکھیں، یسوع نے بالکل یہی کہا تھا، اور لگتا ہے یوں ہی ہے آج۔ اب غور سے سنیں، مجھے امید ہے کہ میں تنقید نہیں کر رہا۔ جب آپ سچائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ نہ کریں، میں کلیسیا کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ لوگ غالباً اسمبلی آف گاڈ کی کلیسیا یا کچھ اور ہے، یا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ مجھے اس سے کچھ لین دین نہیں ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ خدا کی کلیسیا ہے۔ خیر، اب ہم سب کو یہی ہونا چاہیے، تنظیم کے لحاظ سے خدا کی کلیسیا نہیں، بلکہ ہمیں دل سے مسیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا کی کلیسیا نام سے نہیں بلکہ کلام کے دیواروں میں رہتی ہے۔ اب آج اس پر بہت کچھ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے رکنیت بہت معنی رکھتی ہے۔ اب بیپٹسٹوں کو دیکھیں کہ وہ بیداری لا رہے ہیں۔ او، ان کے پاس ایک ہے، 44 میں ان کا نعرہ تھا کہ 44 میں مزید 1,000,000 بلی گرام کے پیغامات چل رہے ہیں، اس لیے یقیناً اس نے بہت سا کام کیا ہے۔ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبٹیرین سبھی بڑے عظیم ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ یسوع نے فریسیوں سے کہا تھا، تم اندھوں کے اندھے رہنما ہو، تم ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو اسے پہلے سے دوگنا جہنم کا وارث بناتے ہو۔ اور ہمیں بھی آج یہی کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ بلی گرام کے ساتھ جب میں نے لوئی ویل میں ناشتے پر شرکت کی اور کینٹکی میں آیا، اور ایک درست مبشر کے طور پر ہوتے ہوئے اس نے کہا، जब मैं जाता हूँ, पौलुस ने भी कहा, यहाँ एक मिसाल मौजूद है। उसने कहा, पौलुस किसी शहर में जाता था और एक आदमी को तब्दील कर लेता था, और फिर जब एक साल के बाद वहाँ जाता था तो 130 हो जाते थे। उसने कहा, लेकिन जब मैं किसी शहर में जाता हूँ तो 30,000 लोग तब्दील हो जाते हैं, लेकिन एक साल के बाद जब वापिस जाता हूँ तो वहाँ 30 भी नहीं होते। उसने कहा, ये क्या मसला है? और मैंने मुबशर के जेन की रसाई की तारीफ की। वहाँ तकरीबन 300 आदमी मौजूद थे, और उसने उंगली बढ़ाकर कहा, तुम सुस्त खादमों के ग्रोह की वजह से। उसने कहा, आप दफ्तर में पांव मेज पर रखकर बैठे रहते हैं और किसी शख्स को टेलीफोन कर कहते हैं कि वो आए और आपकी कलीसिया में शामिल हो जाए, आपको उससे मुलाकात करनी चाहिए। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने दिल में कहा, ओ मेरे खुदाया, आप जानते हैं मुबशर बिली एक अजीम इंसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछूंगा। मैं चाहता तो रुख बदल कर ये बात कह सकता था, लेकिन मैंने उस भाई की तारीफ की ये सोचते हुए कि वो खुदा का खादम है, लेकिन मैंने इस तरह कहा। तब बिली, पौलुस को किस किस्म के खादम की जरूरत थी कि वो उसकी पैरवी करे? क्या हुआ? पौलुस सिर्फ हाथ उठाकर फैसला करने तक ही नहीं रखता था, वो उसे रुल कुछ के बपतिस्मे तक लेकर जाता था, उसकी रूह को आग लगा देता था, और फिर वो आराम से नहीं बैठ सकता था। आज क्या मामला है? रुकनियत हासिल करने का। जी हाँ, अरकान ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, संडे स्कूल की बड़ी बड़ी क्लासेस होनी चाहिए, और जो कोई ज्यादा लोगों को मुरीद करके दूसरी कलीसियों में से निकाल लाता है उसे कोई इनाम दिया जाता है, और वो सबसे बढ़कर होता है। आप जानते हैं कि ये फरीसियों वाला काम है, और फिर इस पर बड़ी शेखी मारते हैं और कहते हैं, हमने एक रिश्ता इतवार उन्हें शिकस्त दे दी थी। अगर आप किसी ऐसे मकाम पर चले जाएं जहां आप इंतहाई तेज रफ्तारी से खुदा की कलीसिया बनाएं, तो फिर ये दरवाजे बंद करके घर जाने का वक्त होगा। खुदा की कलीसिया जमीन पर खुदा की एक जिंदा सलामत चीज है, जिसके अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। मैं जानता हूँ ये मकबूल नहीं हो सकती, और ना ही आप ऐसी तवक्को कर सकते हैं। हमें दुरुस्त होने की जरूरत है। लोग बड़ी शकी मारते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस बड़े शोरोगुल का एलिया नबी पर कोई असर ना हुआ। उसने आग और धुएं की आवाज सुनी, और गर्ज और चमक और खून और तेल और बाकी हर चीज, लेकिन उसे किसी चीज का असर ना हुआ। आप जानते हैं, अमेरिका हमेशा किसी ऐसी बड़ी चीज का मुंतजिर है जिसके साथ बहुत शोरोगुल हो, लेकिन खुदा अब भी वो हल्की सी आवाज है जो नबी को खींच लेती है। आप जानते हैं, जब कोई ट्राली एक खेत में जाती है तो खेतों में जाते हुए बहुत खड़खड़ाती और शोर मचाती है, और जब वो वापिस आती है तो उसी तरह हचकोले खाती है, लेकिन शोर जरा भी नहीं होता, इसलिए कि वो अच्छी चीजों से भरी होती है। समझे? जी हाँ। लेकिन हम अपनी रूहों को शोरोगुल की बहुतात पर ठहराए हुए हैं। हम ये क्यों कर सकते हैं? हम इन कामों को कैसे कर सकते हैं? ओ मेरे खुदाया! और फिर हॉलीवुड की आराइश हुसन से आरास्ता और तंग और जिस्मानी नबूद वाले लबास वाली औरतें पुलपट पर आकर खड़ी हो जाती हैं और रूह में नाचती हैं। मैं नहीं जानता ये किस किस्म की रूह है। अब मैं तनकीदी बनना नहीं चाहता, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, और अगर मैं मोहब्बत नहीं करता तो फिर कोई और मकसद रखने के बाइस खुदा मेरी अदालत करेगा। समझे? लेकिन आप इसे समझ ले, यही चीज है जिसकी तरफ पेंटिकोस्टल माइल हो गए हैं। हमने कोने में बैठे हुए भाई से कुछ ज्यादा हासिल कर लिया है, हमने असेंबली वालों से कुछ ज्यादा हासिल कर लिया है, क्योंकि हम तौहीद परस्त हैं, या हम तसलीस परस्त हैं, या फला कुछ है और ये है या वो है, ये तमाम इनके मुख्तलिफी तजारती नाम है। आप समझ गए हैं? ओ भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुदा से है। खुदा किसी शख्स के साथ इंफरादी तौर पर काम करता है, ठीक है? गौर करें, बड़ा शोरोगुल हुआ, लेकिन नबी किसी चीज से मुतासिर ना हुआ। नबी ने शोरोगुल की कुछ परवाह ना की, लेकिन जब उसने वो हल्की सी आवाज सुनी तो वो जान गया ये कलाम है। उसने अपना चेहरा डांप लिया और चलते हुए बाहर आ गया। आप जानते हैं कि सूरज बगैर शोर पैदा किए हुए 15 मिनट में बहुत सा पानी खींच सकता है, और इससे भी ज्यादा। हम एक गैलन पानी खींचते हुए इससे ज्यादा शोर करते हैं जितना सूरज 10,00,000 बैरल पानी खींचने से पैदा करता है। ये सच है। हम हमेशा किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो बड़ी दिखाई दे और जिसमें बहुत दाद और फरियाद हो, लेकिन जब कलाम को कबूल करने की हकीकत का वक्त आता है तो फिर कोई बात सामने आ जाती है। समझे? और वो आकर कहते हैं, ठीक है, खुदा आपको बरकत दे, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही अरसा हुआ कि एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मैं ये तअस्सुब के बायस नहीं कह रहा, और अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं एक साहिबानी इबादत में था और एक खादम जो पेंटिकोस्टल खादम था अपनी बीवी को पियानो बजाने के लिए आगे लेकर आया, और जब उसने साफ गोई से अपनी बीवी का तारफ मुझसे कराया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझमें जान ही नहीं रही। उस औरत के छोटे छोटे गुंगरियाले बाल, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, होंठों पर सुर्खी और इस तरह की चीजें, और उंगलियों के नाखूनों पर नाखून पॉलिश थी, और इस तरह दिखाई दे रही थी, यानी बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रही थी, और बिल्कुल इस तरह उसके नाखून बड़े पंजों की तरह बड़े हुए थे, और देखने में जिस्मानी खदोखाल नमाया हो रही थी, और उसका लबास भी छोटा बल्कि बहुत ही छोटा था, और जब वो बैठी तो उसके घुटने भी उससे डांपे नहीं जा रहे थे। खैर, मैं थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर कहा, भाई साहब, अगर मैं एक बात करूं तो आपको इससे तकलीफ तो नहीं होगी? उसने कहा, किस लिए? यकीनन नहीं। वो बहुत मौजिब शख्स था और वो औरत भी बड़ी समझदार दिखाई देती थी। मैंने कहा, क्या आप कह सकते हैं कि आपकी बीवी एक मुकद्दसा है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, मैं इस बयान की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो ऐसी दिखाई नहीं दे रही। फिर मैंने कहा, क्या आप ऐसी किसी बात से वाकिफ हैं? मैंने कहा, बल्कि उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपके कहने का क्या मतलब है? ओ, उसने कहा, आप पुराने ज़हन के आदमी लगते हैं। मैंने कहा, मैं कलाम के ज़हन का आदमी हूँ, और ये सच है, मैं कलाम के ज़हन का हूँ। मैं नहीं मानता कोई मुकद्दस शख्स इस तरह के अमाल कर सकता है। जब बाइबल इसे मुजरम ठहराती है तो मैं इसे नहीं मान सकता, समझे? ठीक है, हर मर्तबा ऐसा नजर आता है, और हर जगह कुछ ऐसे ही जुमले सुनने को मिलते हैं। उन्हें 40 फैसले मिले, ये 44 फैसले मिले, हमारे यहाँ 300 फैसले हुए। खैर, ये इकरार होते हैं, और इकरार पत्थर होते हैं। ये दुरुस्त है, क्योंकि पत्रस के इकरार पर उसको पत्थर यानी छोटी चट्टान कहा गया। पत्रस का अपना इकरार था। अब पत्थर अच्छी चीज है, लेकिन एक इमारत को एक पत्थर से क्या फायदा, अगर वहाँ कलाम के तेज आयले के साथ कोई ममार ना हो जो उन्हें तराश कर खुदा के बेटे बनाए, समझे? फिर उस इकरार का क्या फायदा? यही सबब है कि जब आप वापिस आते हैं तो आप 30,000 में से 30 भी नहीं पाते। आप सिर्फ पत्थरों को लुढ़काकर मिट्टी में से निकालते हैं और लुढ़काकर बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी वो हैकल में लगाए जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें काटने की और खुदा के कलाम से नापने की और आपस में रखकर जोड़ने और रसूलों की तालीम की बुनियाद पर तामीर करने की जरूरत होती है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। और उसने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। ये सच है। हम कलीसिया कैसे हो सकते हैं अगर हम एक दूसरे की हकारत कर रहे हैं? उसने कहा था, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो इससे सब जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब हम नौ मरीद होते हैं और तोड़े जाते हैं तो ये तंजीमी इख्तलाफ के बाइस होता है। मैं लोगों को इसका कसूरवार नहीं ठहराता, मैं तंजीमों को कसूरवार ठहराता हूँ। ये सच है, लोगों का कोई जुर्म नहीं, समझे? ओ, ये कितनी बुरी बात है कि मैं आपके पास ये तेज धार आयला यानी खुदा का कलाम होना चाहिए ताकि उन्हें गढ़कर उस इमारत के बेटे बना सके। ओ मेरे अजीजो, मेरी दुआ है कि खुदा मलाकी चार की रफ्तार को तेज करे और आखिरी दिनों का पैगाम हमें अता करे। हमें कोई ऐसा शख्स दे, ऐसी चीज दे जो इस पेंटिकोस्टल कलीसिया को बचा सके। इन आखिरी दिनों में खुदा किस किस्म के पैगंबर को हमारे लिए भेजेगा? ए भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई हूँ, और हम खिदमत होते हुए मैं आपको बताऊंगा जो उस वक्त के मुतलाशी है कि वो भी उसी तरह का पैगंबर होगा जैसे पैगंबर दीगर अदवार में आते रहे हैं। वो भी वैसा ही होगा। वो कलीसिया को कलाम की तरफ वापस लाएगा। इससे पेशतर कि ये आ जाए, खुदा पहले हमें एक बुनियाद डालने दे। खुदा हमें उस बुनियाद में डाले इससे पहले कि वो पैगंबर आ जाए, इससे पहले कि वो आए और हमें बुनियाद में डाले और वो पत्थर हो यानी तराशे हुए पत्थर बनकर जब खुदा उसे भेजे तो उसके शाना बशाना खड़े हो जाए, क्योंकि खुदा ने वादा किया था कि वो ऐसा करेगा। अब मुझे मालूम है और मैं उसकी वापसी को महसूस कर सकता हूँ। और याद रखें, इस छोटी सी नेमत से मैं रूह के बताए हुए दिलों के ख्यालों को भी जान सकता हूँ, समझ गए? अब जब मैंने मलाकी चार कहा तो आपको खफा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मगर आप कहेंगे, यीशु ने कहा था, चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था यही है। अब अगर आप गौर करें तो मुकद्दस मत्ती में 11वें बाब की गालबन 6वीं आयत है, कहा गया है, अगर चाहो तो मानो, जो आने वाला था यही है जिसकी बाबत कहा गया था, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ। इसका जिक्र मलाकी 3 में आया है, ना कि मलाकी 4 में, क्योंकि मलाकी 4 में खुदा ने ये कहा था, इस दिन के आने से पेशतर जमीन जलाई जाएगी और रास्तबाज बदकारों की राह पर चलेंगे, वो भूसे की मानिंद हो जाएंगे। ये सच है, लेकिन उस वक्त वो अपने आगे भेजे जाने वाले पैगंबर की बात कर रहा था जो एक एलीशा था। और मैं इन बातों पर बिल्कुल ईमान नहीं रखता जो बातें आजकल एलिया के चोगे के बारे में की जाती हैं। बेशक इन तमाम नकलों को जाहिर होना था ताकि जब असल चीज जाहिर हो तो उसमें उलझन पैदा कर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पेंटेकोस्टल दौर के आखिर में एक पैगंबर खड़ा होगा जो सारे काम को सरंजाम देगा। वो एक इंसान होगा, वो कोई ग्रुप या तंजीम नहीं, बल्कि एक आदमी होगा। हमेशा इसी तरह हुआ है और वो अब्दी खुदा है जो अपने प्रोग्राम को तब्दील नहीं कर सकता। याद करें, अगर ये पैगंबर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसका जिक्र मलाकी 4 में है, तो फिर कलाम तो नाकाम हो गया है, क्योंकि कलाम कहता है जमीन भूसे की मानिंद जलाई जाएगी और रास्तबाज बदकारों की राह पर चलेंगे। इसलिए इसे पढ़कर देखें कि आया ये दुरुस्त है। देखें, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा था, बल्कि उसने मलाकी 3 का हवाला दिया, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे राह तैयार करेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब याद रखें कि इस दूसरे शख्स का काम औलाद के दिल वालिदों की तरफ फेर कर बहाल करना है, औलाद के ईमान को वालिदों के ईमान की तरफ यानी असल बाइबल की तरफ फेरना है। ये ऐन वही कुछ है जो मूसा ने किया, ये बिल्कुल वही है जो यीशु ने किया, ये बिल्कुल वही कुछ है जो पूरी बाइबल में हर एक पैगंबर ने अपने आखिरी वक्त के हिस्से में किया। उन्होंने पैगाम को बहाल किया, लेकिन उन दिनों में लोगों ने तंजीमों और दूसरी चीजों के जरिए शकूकों और शबात पैदा कर दिए। उन्होंने आज भी वही काम किया है, बस हम एक पैगंबर की तलाश कर रहे हैं, खुदा उसे भेजे। क्या आपका ख्याल है कि हम उसे कबूल कर लेंगे? नहीं जनाब, वो तो एक जुनूनी और कपटी होगा, यकीनन होगा, लेकिन खुदा उसे साबित करेगा। लेकिन हकीकी ईमानदार जो हमेशा की जिंदगी के लिए मुकरर किए गए हैं, उनके लिए यीशु ने कहा है, वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं, वो मेरे पास आ जाएंगे और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच न ले। वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं बीते वक्तों में मेरे पास आ जाएंगे। ये दुरुस्त है, वो उसके लिए मुकरर थे। यहाँ मैं अब्दी तहफ्फुज़ पर बैप्टिस्ट तालीम को तस्लीम नहीं करता, मैं किसी और तरीके से इस पर ईमान रखता हूँ। और मेरा ईमान ये है कि जब तक आप कलीसिया के अंदर हैं, तो आप महफूज हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के खून की मोतैती से निकल जाते हैं, तो फिर आप महफूज नहीं है। मसलन, जब तक मैं इस कमरे के अंदर हूँ तो बारिश से महफूज हूँ, और जब आप रुलकुश का बपतिस्मा हासिल कर ले और कहे कि आपके पास रुलकुश है, तो क्या फिर खुदा के कलाम का इनकार कर सकते हैं? आप कहते हैं आप ईमान लाए हैं और ये रुलकुश है जिसे हमने हासिल किया है, लेकिन फिर कलाम के सच होने का इनकार करते हैं। फिर ये रुलकुश कैसे हो सकता है जबकि इस बाइबल को तहरीर करने वाला रुलकुश है? क्या रुलकुश अपने ही कलाम का इनकार करेगा और कहेगा मैं गलत था तुम दुरुस्त हो? नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता। नहीं जनाब, तेज तलवार यानी खुदावन ने हमारे लिए एक अजीम पैगाम को भेजा है, यही चीज है जिसके हम मुतलाशी थे। लेकिन बिलाशुबा जब वो इन पत्थरों को उस इमारत में तरतीब से लगाने और काटने के लिए आएगा तो क्या होगा? उनमें से बहुत से कलाम के इम्तहान के आगे खड़े ना रह सकेंगे और वो खुदा के कलाम से बढ़कर अपनी तंजीमों से मोहब्बत करेंगे और उस शख्स के वसीला से कलाम को जाहिर किया जाएगा। वो एक नबी होगा जो खुदावन के नाम से आएगा, वो रूहे जमीन पर जाहिर होगा, ये मेरा ईमान है। ओ, जबकि हर कोई कह रहा है ये लोगों का एक ग्रोह होगा, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बाइबल में से दिखाए कि ये कहाँ पर लोगों का एक ग्रोह होगा। क्या खुदा खुद अपने कलाम को तोड़ डालेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं जनाब, उसने इसका वादा किया था, वो एक फर्दे वाहिद होगा, लेकिन फिर और लोग उसका साथ देंगे। बिलाशुबा हजारों कलीसिया के तमाम ईमानदार हर जगह उसके साथ खड़े होंगे, जैसे नूह के दिनों में हुआ था कि बहुत से लोग बचाए नहीं गए थे क्योंकि यीशु ने कहा था, जैसा नूह के दिनों में हुआ। क्या आप इस बात से आगाह हैं? जैसा लूत के दिनों में हुआ, जरा उनकी गिनती करें। इब्ने आदम के आने पर ऐसा ही होगा, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरा कलाम हरगिज न टलेगा। क्या आप मेरा मतलब समझ गए हैं? हो भाइयों, एदादो शुमार को कर लेना, हमारे लिए बेहतर होगा। शायद हमारे ख्याल के मुताबिक बहुत देर हो चुकी हो, शायद हम किसी दिन बेदार हो तो पता चले कि हम कुछ खो चुके हैं। मोहतात हो जाएं, जागो और दुआ करो, तहकीक करो, تلاش کرو، اسے اپنے اوپر سے گزر نہ جانے دو۔ اور یاد رکھو، جب کلام کی منادی کر دی جاتی ہے تو خدا اس کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ اسے سامنے لائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے کیا کہا تھا؟ لوط کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، آگ نازل ہونے سے پہلے کیا بات واقعہ ہوئی تھی؟ اب پھر آگ نازل ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ کلیسیا کو کس قسم کا پیغام ملے گا؟ سدوم کی طرح اب بھی برگزیدہ کلیسیا نہیں ہے۔ ذرا ان تینوں کو ذہن میں لائیں، پہلے سدومی تھے، دوسرا لوط اور اس کا گروہ تھا، پھر رسمی کلیسیا تھی، جبکہ ابراہم برگزیدہ تھا۔ ان تینوں نے مختلف پیغمبروں کے وسیلہ سے پیغام حاصل کیا تھا۔ جی ہاں، دیکھیں برگزیدہ کلیسیا کے پاس کون آیا تھا؟ خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یسوع نے بالکل اسی طرح کہا تھا، اس لیے بلا شبہ یہ اسی طرح ہوگا۔ اب وہ تیرے، جب یسوع آزمائش کے لیے آیا تو اس نے کہا کتاب مقدس میں تلاش کرو، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس میں سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کیا وہ اس امتحان کے آگے کھڑے رہ سکے؟ جی نہیں۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ پتھروں کے تمام اقرار جو کلام کے امتحان کے آگے قائم نہ رہ سکے، فاضل ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں۔ وہ شکستہ اور پانی سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ امتحان پر پورے نہیں اتر سکتے۔ او انسان پھر کباڑ کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ خدا نے ہمیشہ کردار کو تعداد سے زیادہ ترجیح دی ہے۔ اب میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنی دیر بٹھائے رکھا، میرا ایسا مقصد نہیں تھا۔ مجھے ذرا آخری بیان چند ایک لمحوں میں پیش کرنے دیں، پھر میں بہت جلد اسے ختم کر دوں گا۔ مجھے امید ہے میں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو آپ کو مستقل مزاج رہنے میں مدد دے گی، دیکھیں تاکہ آپ کو مطالعہ کرنے میں آسانی ہو۔ سمجھے؟ خدا نے ہمیشہ کردار کو مد نظر رکھا ہے، ممبران کی تعداد کو نہیں۔ لیکن آج کل ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، ہم کردار کی بجائے اراکان، اچھے لباس، اچھی رقم دینے والے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی ہاں، علی اظہر نے جستجو جاری رکھی جب تک کہ کردار کو نہ پا لیا۔ یہ درست ہے، اسے کیا حاصل کرنا تھا؟ اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ کردار کس کے لیے؟ اسحاق کے لیے، یعنی دلہن تلاش کرنی تھی جو کہ کلیسیا کی تشبیہ تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں وہ ابراہم کی جسمانی نسل تھی، لیکن یہ ابراہم کی شائی نسل ہے۔ خیر، اگر علی اظہر یعنی ایک پیغمبر دلہن تلاش کر رہا تھا اور کردار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر آخری زمانے کا پیغمبر آیا ہے تو وہ بھی مسیح کی دلہن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تنظیموں کی رکنیت تلاش نہیں کرے گا، وہ اس کی مرضی کے مطابق کردار تلاش کرے گا۔ غور کریں، پہلے اس کا اچھا کردار دیکھا گیا، پھر اسحاق کی ملاقات کے لیے اسے تیار کیا گیا۔ جب اس نے کردار تلاش کر لیا تو پھر اس نے دلہن کو اتنی دیر روکے رکھا کہ وہ اس سے اسحاق کا پیغام سن لے۔ یہی آخری دنوں کا پیغمبر کرے گا، یعنی شام کی روشنی میں۔ پہلے اس کی کلیسیا کی تلاش کی جائے گی، وہ پیغام پر کہاں ایمان لائے گی۔ اسے تلاش کرے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ تلاش کرے وہ کلیسیا کہاں ہے جو آپ کو اندر آنے دے گی، جو آپ کو دیکھ کر دروازہ بند نہیں کرے گی، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ کو کردار مل جائے گا۔ اب اگر وہ اتنا عرصہ ٹھہری رہی کہ اسے بتایا جا سکے کہ دلہن کو کیسا لباس پہنایا جائے گا، اسے لباس پہنایا جانا ہے، صرف مضبوطی سے کھڑے رہے۔ اگر وہ ایسا کر سکے تو ریبیکا پر غور کرے کہ ہر لفظ سن کر اس کا ننھا دل دھڑک رہا تھا، اسے بتایا جا رہا تھا۔ اب اس کے لیے آپ کو سخت پریشانی اٹھانی ہوگی کہ میں کہاں جاؤں جب تک کہ کردار کو نہ پالوں، اور جب مجھے کردار مل جائے تو میں اسے اس وقت تک روکے رکھوں جب تک وہ دلہا کی ملاقات کو جانے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ او میرے عزیزو، یہ کیسی چھو لینے والی بات ہے! کاش گڑی ہمیں کچھ اور وقت دے دے۔ بس وہ تیار ہو گئی، وہ کھڑی ہو گئی اور اس سے اسحاق کا پیغام سنتی رہی۔ علی اظہر اپنی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے بھیجنے والے کی بات کر رہا تھا، اور اس کے پاس وہ تحائف تھے جن سے وہ ثابت کر سکتا تھا کہ اس کو بھیجا گیا ہے۔ آمین۔ وہ اسے ان چیزوں سے ملبس کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے تیار کرنا ہے۔ اگر میں صرف اس کا منہ ہی دلا سکوں تو بہت ہے۔ سمجھے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مجھے روک دیا گیا ہے، اس لیے میں خاموش رہنا بہتر سمجھوں گا. البتہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. آپ جانتے ہیں میں نے کیا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, سنیں اور ثابت قدمی سے کھڑے رہیں. غور کریں, آخری زمانے کے پیمبر کا کام مقدسوں کو تیار کرنا ہوگا, دلہن کو دلہا کے لیے تیار کرنا. یہ اس کا پیغام ہوگا. کیا اب آپ اے بی سی پڑھنے کو تیار ہیں تاکہ بعد میں الجبرا پڑھ سکیں؟ جب کتاب کی پشت پر سے موریں کھولی جائیں گی تو یہ صرف انہی پر ظاہر ہوں گی. یہ سچ ہے. پہلے اے بی سی سیکھیں. اے بی سی کیا ہے؟ ہمیشہ مسیح پر ایمان رکھنا, اپنے رسم و رواج پر نہیں بلکہ مسیح پر. سمجھے؟ اس بات پر ایمان رکھیں جو مسیح کہتا ہے, اس پر نہیں جو کوئی انسان کہتا ہے. اگر بات کلام کے برعکس ہو اور اگر کوئی شخص آپ کو عورتوں کے بال کاٹنے کو جائز قرار دے دے تو جان لے وہ جھوٹا ہے, کیونکہ بائبل کہتی ہے یہ غلط ہے. اور اگر وہ کہے کہ آپ کی 4 یا 5 بیویاں ہو سکتی ہیں تو آپ پھر بھی ڈیکن ہو سکتے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کلام کے برعکس ہے. سمجھے؟ تمام دیگر باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں انہیں کلام کے پاس لا کر دیکھیں, آیا یہ درست ہیں یا نہیں. کلیسیا کو کلام کی طرف واپس لائیں. اب یہ ملاکی 4 والا پیمبر کیا کرنے کے لیے ہوگا؟ وہ حقیقی ایمان مردوں میں سے جی اٹھنے کے ایمان کو واپس لائے گا, جیسا کہ انہوں نے یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا. انہوں نے اسے اپنے درمیان کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ مشہور آدمی نہیں تھے. وہ نکلے اور کلام کی منادی کرنے لگے, اور ہو وہ بہت طویل پیغام دیتے تھے. ایک مرتبہ پالوس ساری رات کلام سناتا رہا. سمجھے؟ ایک آدمی دوسری منزل کی کھڑکی سے گر گیا اور مر گیا. پالوس اس کی لاش کے اوپر لیٹ گیا اور دیکھیں اسے دوبارہ زندگی میں لے آیا. سمجھے؟ دیکھیں اس نے منادی جاری رکھی. اب وہ آدمی اس سے بہت مختلف تھے, جو کہ پی ایچ ایل ایل کیو یو ایس ٹی یا جو کچھ بھی یہ ہے وہ آج کل ہے. کیا پیمبر جدا کرے گا؟ بلکہ پیمبر کے ذریعے ملنے والا پیغام ایمانداروں کو غیر ایمانداروں سے جدا کرے گا. کچھ تو اس کو قبول کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. کچھ لوتھرن لوگوں نے, بلکہ کچھ کیتھولک لوگوں نے لوتھر کا ساتھ دیا لیکن کچھ نے نہ دیا. کچھ لوتھرن لوگوں نے میتھوڈسٹوں کا ساتھ دیا لیکن کچھ نے نہ دیا. کچھ پینتیکوست کا ساتھ دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے. کچھ شام کی روشنی کو قبول کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. آپ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ شام کی روشنی ہے یا نہیں؟ اسے کلام سے پرکھیں, ایک لفظ سے نہیں بلکہ پورے کلام کو اکٹھا کر کے دیکھیں. پرکھیں, دیکھیں یہ درست ہے یا نہیں. ہو یہ اندر سے کیا ہے؟ تب اگر یہ پیغام خدا کے اس عملی کام کا اظہار ہو جس کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا اور یہ کلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو, تو پھر کلام اسی طرح ظاہر ہوگا جیسے دوسرے زمانوں میں دوسرے نبیوں کے وسیلے سے ظاہر ہوا. غور کریں, جب پیغام, بلکہ غور سے دیکھیں, جب پیغام کو لوگ رد کر دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پیغمبر مکمل شکست کھا چکا ہے. اس کے لیے اور کوئی دروازہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے, جیسے ہمارے خداوند کے ساتھ ہوا. یاد کریں جب وہ نوجوان نبی بیماروں کو شفا دیتا تھا, وہ میرے خدایا, تو وہ کہتے تھے وہ بڑا عظیم شخص ہے. ہیلو ربی, آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ لیکن ایک دن وہ بیٹھ گیا اور ان کے آگے سچائی بیان کرنے لگا. لوگوں نے, یعنی کلیسیا نے اس کی حمایت کی. ہزاروں اس کے پیچھے چلے. 12 رسولوں کے علاوہ اس کے پاس 70 خادم اور تھے. لیکن ایک دن اس نے روٹیوں کی تعداد بڑھا دی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے, کیونکہ صرف خدا ہی آسمان سے روٹیاں برسا سکتا ہے. جی ہاں, سمجھے, اس نے روٹیوں کی تعداد بڑھا دی اور اس کے فوراً بعد وہ پانی پر چلا اور معجزات کیے, اور جو کچھ وہ تھا اس نے اسے ثابت کیا. اور ایسا کرنے کے بعد اس نے سختی کے ساتھ لوگوں کو سچائی بتانا شروع کی اور لوگ اس سے پھر گئے. اور 70 خادموں نے کہا, اس تعلیم کو کون سن سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل باتیں ہیں. جو کچھ ہم نے سمجھا تھا تو نے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے. اب تو کون ہے جو ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے؟ اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے. پھر یسوع اپنے چھوٹے گروہ سے مخاطب ہوا, جیسے نوح کے دنوں میں تھا, جیسے سدوم کے دنوں میں ہوا تھا. اس نے کہا, کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ پھر پطرس نے یہ عظیم الفاظ کہے, خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ خدا ہماری مدد کر. غور کرے, جب کلام کو رد کر دیا جاتا ہے اور پیغمبر شکست خوردہ دکھائی دینے لگتا ہے, تب خدا منظر پر قدم بڑھاتا ہے. اس کا پیغام پورا ہو چکا ہوتا ہے. نوح, اب میں ختم کر رہا ہوں. نوح نے اپنی کشتی کے دروازے پر 120 سال تک منادی کی, حتیٰ کہ وہ اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس پر ہنستے تھے. نو یہ سوچتے ہوئے کشتی کے اندر داخل ہو گیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا نے دروازے کو بند کر دیا، لوگ باہر انتظار کرنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ 7 دن تک انتظار میں سخت پریشان بیٹھا رہا، اور پھر 7ویں دن بارش آ گئی۔ جی ہاں، موسیٰ اندر سے کیا تھا؟ وہ اسی فرض پر گامزن تھا، وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس کے راستے میں بحر کلزم آ گیا، وہ اپنی شاہراہ کے آخر پر تھا، اور یہی وقت تھا جب شاہراہ کے خاتمے پر خدا پوربی ہوا کے ساتھ آیا اور سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ دانیل بھی اپنے پیغام کے ساتھ کھڑا تھا، میں اس بادشاہ کی دنیا کے ساتھ خود کو آلودہ نہیں کروں گا۔ وہ درست طور پر خدا کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اپنی شاہراہ کے آخر پر تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اسے شیروں کی ماد میں ڈال دیا، اور پھر خدا منظر پر آ گیا۔ اور ایک صبح ادھر بابل میں، آمین، میں آسمان پر دیکھ سکتا ہوں، مجھے ایک تخت دکھائی دے رہا ہے جس کے گرد فرشتے کھڑے ہیں، اور نیچے بابل میں دیکھ رہا ہوں تو آگ کی ایک بھٹی جل رہی ہے۔ میں 3 نوجوانوں کو کھڑے ہوئے دیکھ سکتا ہوں جو کہتے ہیں، ہمارا خدا ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، سمجھے، لیکن ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کلام کے برعکس ہے، سمجھے، ہم اپنے مقام پر کھڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، پھر سیڑھیوں پر چڑھو کیونکہ تم آگ میں ڈالے جاؤ گے، کیونکہ تم سخت آدمی ہو۔ وہ اس نیزے کی نو پر قدم با قدم بڑھتے گئے، اور آگ کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تخت کی دوسری طرف قریب کھڑے ہوئے ایک فرشتے کو دیکھ سکتا ہوں، جس نے فوراً ایک تلوار کھینچ لی اور کہا، اے باپ، ادھر نیچے دیکھ کیا ہو رہا ہے، مجھے نیچے جانے دے، میں جبرائیل ہوں، میں منظر کو تبدیل کر دوں گا۔ جبرائیل، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اور ایک اور نے آگے بڑھ کر کہا، باپ، میں ناگ دونا ہوں، میں پانی سے تباہ کر دوں گا، طوفان نو سے پہلے کے دور میں انسان نے گناہ کیا اور تیرے لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کی، اور میں نے تمام روح زمین کو پانی میں غرق کر دیا، میں آج صبح ہی بابل کو مٹا کر رکھ دوں گا، مجھے نیچے جانے دے۔ ناگ دونا، میں جانتا ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو وفادار فرشتہ ہے، سمجھے، لیکن میں تجھے نہیں بھیج سکتا، یہ میرا کام ہے، میں خود نیچے جاؤں گا۔ کیا اس جگہ تو نے ان کو دیکھا ہے؟ میں ساری رات انہیں دیکھتا رہا ہوں، میں نے ان کی دعائیا عبادت سنی ہے، اپنے کلام کے لیے ان کی ثابت قدمی کو میں نے دیکھ لیا ہے، میں وقت پر وہاں پہنچوں گا۔ او میرے خدایا، بس میں اسے اس طرح اٹھتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اور اس کا شاہانہ لباس اس کے گرد تھا، اور اس نے کہا، اے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی ہوا، یہاں آ جاؤ، اس گرج کے نیچے آ جاؤ، آج صبح میں تجھ پر رتھ کی سواری کر کے میں نیچے بابل میں جا رہا ہوں، میں منظر تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ او میرے بھائیو، وہ عین وقت پر وہاں پہنچ گیا، اس کی آنکھ چڑیا پر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آج رات بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، خواہ ہم کھڑے رہے یا نہ کھڑے رہے، ہم خواہ کچھ بھی فیصلہ کرے، خواہ ہم کلام کے ساتھ درست طور پر کھڑے رہے یا اس سے دور چلے جائیں، یہ آپ کی سوچ سے زیادہ آگے ہے۔ یعقوب تحریک ملنے پر واپس اپنے گھر کے راستے پر تھا، اور اس کا بھائی اسے ملنے آ رہا تھا۔ او، مگر ایک رات اس نے خدا کے ساتھ کشتی کی، وہ اپنے بھائی کو ملنے سے ڈرتا تھا، لیکن اگلی صبح ایک لنگڑاتے ہوئے شہزادے کی طرح وہ بے خوف تھا۔ مجھے عیسیٰ یا اس کی فوج یا کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا منظر پر آ گیا ہے۔ دیکھے، خدا اپنے خاص طریقے سے کام کرتا ہے۔ یسوع جب خدا کا بیٹا بن کر ظاہر ہوا اور اسے رد کر دیا گیا، تو اس نے کہا، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ وہ دن کا نور تھا، وہ آج بھی نور ہے، اور منظر پر ظاہر ہو گیا، اور جب تک وہ لوگوں کو روٹیاں اور مچھلیاں کھلاتا رہا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن جب اس نے ان کے آگے کلام کی سچائی بیان کی تو وہ اس سے پھر گئے۔ انہوں نے اپنی روایات سے الگ نہ ہونا چاہا، انہیں یہ بات برعکس دکھائی دی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاک نوشتوں کے مطابق تھا، لیکن دنیا کی اندھی آنکھیں اسے پہچان نہ سکی، نہ وہ اب پہچان سکیں گی، اور نہ ہی وہ مجموعی طور پر، میرا مطلب ہے کہ کسی بھی زمانے میں پہچان سکیں گی۔ پھر کیا ہوا؟ یسوع شکست خوردہ دکھائی دینے لگا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت سے مقبولیت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے ان کو کلام سنانا شروع کیا، جب وہ ان کے پاس جاتا اور شفایا عبادات اور کنونشن کرواتا تھا تو ہر کوئی اسے چاہتا تھا، اے ربی ادھر آ جاؤ، اے ربی ادھر آ جاؤ، لیکن جب اس نے اپنی تعلیم دینا شروع کی تو کہنے لگے، ہو تیری تعلیم ہمارے لوگوں کو خراب کرتی ہے، او خدایا رحم ہو، ओ ए रबी, अब मैं तुझे अपनी कलीसिया में नहीं बुला सकता, इसलिए क्योंकि तेरी बातें हमारे लोगों को उलझन में डाल देती हैं। जिस बात पर हम ईमान रखते हैं, तेरी तालीम उसके बरक्स है, उसमें तब्दीली नहीं आई, समझे? ये ऐसा नहीं है। जी हाँ रबी, हम तुझे कबूल नहीं कर सकते, अगरचे वो मुनकशिफ हुआ, नविश्तों से साबित हुआ कि वो कौन था, तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। बिलाखर वो आखिरी लम्हा आ गया जब शैतान ने सोचा, अब मैंने उस पर फतह पाली है। उसने उसे सलीब पर मसलूब करवा दिया, शिकस्त 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 देते हुए। आखिर वो समझने लगे कि उन्होंने उस पर फतह पाली है और उसे कब्र में पहुंचा दिया है। लेकिन यही वक्त था जब खुदा मंजर पर आ गया और वो जी उठा और कब्र से बाहर निकल गया। क्यों? ऐसी ही बात पौलुस ने कही थी कि सब दमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। कलाम के 22, सब आदमियों ने मुझे छोड़ दिया है। मैं ये नहीं मानता कि दिमाग नाइट क्लबों में जाने लगा या ऐसे काम करने लगा, लेकिन दिमाग क्योंकि एक अमीर आदमी था, इसलिए वो जाना चाहता था। वो मकबूल आम ग्रोह के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो भी उधर से चला गया जहां बाकी सब चले गए। और तब पौलुस ने कहा कि सब आदमियों ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी खिदमत कोने के सिरे के पत्थर तक पहुंच गई थी। वो इख्तिताम की तरफ आ रहा था। वो शहीद होने की ख्वाहिश रखता था क्योंकि उसने स्टीफनस को कत्ल किया था। वो उसकी मौत का गवाह और उसके कत्ल पर राजी था। वो मरना चाहता था, जबकि एक नामवर नबी उबस उसके सामने खड़ा हुआ और उसे बताया कि वो यरूशलम ना जाए। लेकिन उसने कहा, मैं जानता हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ जंजीरों में जकड़ा और बंधा हुआ यरूशलम जाने को नहीं, बल्कि मैं खुदावंद यस्सु की खातिर मरने को भी तैयार हूँ। ये क्या था? वो अपनी खिदमत पर मोहर कर रहा था। ऐ जिंदा खुदा की कलीसिया, हम पूरी रात भी गुफ्तगू कर सकते हैं। हम अपने पैगाम पर कैसे मोहर करें? हम ये कैसे करें? खुदा हमारी मदद कर कि हम उसके कलाम को लें और जुर्रत के साथ खड़े रहे। मुझे कलाम ही के साथ मरने दे, मैं कलाम ही के साथ जीऊं और कलाम ही के साथ मरूं। रोशनी को फैलाएं, क्योंकि शाम के वक्त रोशनी होगी। अजीजों, हम उसी वक्त में हैं। आए उस पर ईमान रखें। हम अपने सरों को झुकाते हैं। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको तवील वक्त तक बिठाए रखा, तकरीबन 2 घंटे तक। मेरा ख्याल है 1 घंटा और 45 मिनट बिठाए रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी बात से तकलीफ नहीं पहुँची होगी। हम ठोकर खिलाने वाले नहीं हैं, जैसा कि अगर हमारे दिलों और रूहों के अंदर ये बात हो, अगर हम खादम लोग रूल कुछ से मामूर भाई ऐसी बात करें, तो फिर हम खुद भी गलत होंगे। देखें, जब मैंने निजात पाई और अपने बैप्टिस्ट पादरी को बताया कि मैंने रूहुल कुछ हासिल कर लिया है और ये सारी बातें, जैसे कि और खुदावंत के फरिश्ते ने मुझसे कलाम किया है और मुझे बताया है कि क्या करना चाहिए, तो उसने कहा, बिली तुमने जरूर कोई भयानक ख्वाब देखा होगा। मैंने कहा, डॉक्टर डेविस मैंने एक फरिश्ते को देखा है। उसने कहा, ये हमाकत है। उसने कहा, ये अब्लीस की तरफ से है, समझे? ओ मेरे अजीजों, मुझे उससे बहुत तकलीफ पहुंची। उसने कहा, क्या तुम बादशाहों और हाकमों के सामने मुनादी करोगे? मैंने कहा, उसने मुझे यही कहा था। उसने मुझसे कहा, क्या 7वें दर्जे की तालीम के साथ? मैंने कहा, उसने मुझसे यही कहा था। उसने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी कोई सुनेगा, जबकि इस जमाने में बेहतरीन तिब्बी तहकीक अरूज पर है? क्या तुम लोगों को इलाही शिफा के बारे में बता सकोगे? मैंने कहा, मैं इससे बाज नहीं रह सकता, चाहे कितने भी जाति जुलियत मेरे सामने खड़े हों। उसने कहा, तुम्हारे ख्याल में कौन तुम्हारी सुनेगा? मैंने कहा, अगर खुदा मुझे भेज रहा है तो कोई मेरी जरूर सुनेगा। उस वक्त मैं आप लोगों को नहीं जानता था, और जब आपके पास आया तो आपके दरमियान यूं समा गया जैसे कोई हाथ पर दस्ताना पहन लेता है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने पासबान भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस भाई की तरह कोई प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या लूथरन खादम अपने गिरजाघर का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा, हमारे लिए इस किस्म के पैगाम की मुनादी करे? नहीं जनाब, हरगिज नहीं। ये बहादुर लोग हैं जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं। गौर करें, अब आप ऐसे लोगों के साथ कलाम के साथ दुरुस्त अंदाज में खड़े हो जाएं और दुनिया की सब चीजों से दूर हो जाएं। बहनों, अपने बाल लंबे होने दो, उम्दा और साफ सुथरा लिबास पहनो, खुद पर शर्मिंदा हो, अपने चेहरे से रंगो रोगन उतार डालो, समझे? बाल काटने की निस्बत मुंह रंगने के खिलाफ ज्यादा नविश्ते मौजूद हैं। ये सच है, ऐसा ना करें, ऐसा मत करें। बाइबल कहती है, बाल काटना औरत के लिए बेहुर्मती है, बाल उसकी जीनत है। शायद आप कहें, ये तो मामूली सी बात है, ठीक है, तो फिर आए छोटी चीजों को रास्ते से हटा दे और फिर हम बड़ी चीजों की बात कर सकेंगे। आए दुरुस्त किस्म का आगाज करें।
Oh my.
اب بھائیوں کی باری ہے، او میرے خدایا، اب مجھے مردوں سے کچھ کہنا ہے۔ اے صاحب، میرے بھائی، اگر آپ روح سے ممور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو ایسے کام کرنے دیتے ہیں تو مجھے آپ پر شرم آتی ہے، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں بازار جانے دیتے ہیں، اور آپ جو بے حیا لباس اور اس طرح کی چیزیں پہنتی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کہتی ہے، یسوع نے خود کہا، جس کسی نے بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھا وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ آپ کہیں گی، اب ایک منٹ ٹھہرے بھائی صاحب، میں تو بے گناہ ہوں، مجھے یقین ہے۔ میری بہن، آپ عملی اعتبار سے تو بے گناہ ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار کر پیش کرتی ہیں اور کوئی گناہ گار آپ پر بری نگاہ ڈالتا ہے تو پھر مجرم کون ہوا؟ آپ مجرم ہیں جس نے خود کو اس طرح پیش کیا۔ اور پھر عدالت کے روز جب وہ گناہ گار زناکاری کے عمل کا جواب دے گا تو اس نے اپنے دل میں کس کے ساتھ حرام کاری کی تھی؟ آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود کو یوں پیش کیا تھا۔ اب یہ عین سچائی ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں بہن جی۔ مہربانی سے یسوع مسیح کے نام میں میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خود کو ٹھیک کر لیں۔ بھائی، آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو اس طرح چلاتے ہیں۔ خود کو ٹھیک کریں۔ میں بحیثیت مرد آپ سے بہتر توقعات رکھتا ہوں، سمجھے؟ جو پادری ایسے لوگوں کو قبول کرتے ہیں اور دو دو تین تین موجودہ بیویاں رکھنے کے باوجود ڈیکن مقرر کرتے ہیں اور انہیں ذمہ داری سونپتے ہیں، ایسے کاموں پر خادموں، کیا آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا آپ کو ان باتوں پر شرم نہیں آنی چاہیے؟ آپ انہیں ممبر بناتے ہیں جبکہ وہ حرام کاری اور سگریٹ نوشی اور سب ایسے کام کرتے ہیں، اور آپ پلپٹ پر سے ان کی مخالفت نہیں کرتے، اظہار خیال بھی نہیں کرتے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بھائیو، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے صبر کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا۔ اب مجھے فکر ہے، شام کی روشنی آ چکی ہے۔ شام کی روشنی یہ ہے کہ کلام کی طرف واپس چلے۔ اب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اور دلوں کو جھکائے ہوئے اپنے آپ سے سوال پوچھے، کیا میں اس کلام کے معیار کے مطابق ہوں؟ کیا میں ہوں؟ میں یہاں پلیٹ فارم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، ہر اس چیز کو جو تجھے پسند نہ ہو مجھ سے دور کر دے۔ اے خدا، اسے مجھ سے دور کر دے۔ اب ہم اپنی شارہ کے آخری سرے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا آپ خلوص سے دل سے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، اے خدا، مجھ سے ہر اس چیز کو دور کر دے جو تجھے پسند نہیں؟ اے خداوند، مجھے بنا، مجھے ڈھال اور مجھے تیار کر۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر یہاں کوئی ایسا شخص ہو جو درست نہ ہو، جو گناہ گار ہو اور آج رات یہاں آیا ہو، اس سے پہلے اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کیا ہو، یا وہ برگشتہ ہو گیا ہو اور وہ واپس آنا چاہتا ہو، تو اسے دعوت ہے کہ یہاں مذبح پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ کا ایمان ہو کہ خدا بیماروں کے لیے میری دعا سنے گا، میرا تو ایمان ہے کہ وہ میری سنے گا۔ اگر میں اور آپ مل کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان رکھ کر دعا مانگیں گے تو میرا ایمان ہے خدا ضرور سنے گا۔ آپ کو دعوت ہے کہ دعا کے لیے آگے آ جائیں۔ اب اے ہمارے آسمانی باپ، ہم ان سامعین کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خداوند، یہ شکستہ الفاظ کافی طویل ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ کچھ تھک کر چور ہو گئے ہیں اور گھروں کو چلے گئے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں نے برا بھی محسوس کیا ہو۔ اور خداوند، میں بتا نہیں سکتا کہ کون یہاں سارا وقت موجود رہا ہے، مگر اب اے باپ، یہ تیرا کلام ہے اور تو میرے دل کو جانتا ہے، اور میں اگر میں ایسا نہ کروں تو میرے لیے یہ افسوس کا مقام ہے۔ خداوند، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اس لیے اب میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ کلام کو سمجھتے ہیں صاف طور پر سمجھ جائیں، اور مجھے بھروسہ ہے کہ جن کو تو نے زندگی کے لیے بلایا ہے وہ کلام کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ماسوائے اس دل کے جس میں خدا اور اس کی کلیسیا کے لیے محبت بری ہو، جن کے لیے میں التجا کرتا ہوں۔ اے باپ، یہاں ہر ہاتھ عملی طور پر ایک روحانی ختنے کے لیے بلند ہوا ہے، تاکہ ہر فالتو اور غیر مطلوب چیز کو کاٹ کر دور کر دیا جائے۔ اے خدا، ہم سب کی مدد کر۔ خداوند، میں ٹھیک طور سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں اس پر مسرت ہزار سالہ دور کی راہ دیکھ رہا ہوں جس میں تمام گناہ اور شرمندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اے باپ، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم ان باتوں کے محتاط ہیں، ہم کوتاہیوں کے محتاط ہیں، ہم گناہ کے محتاط ہیں، ہم ابھی سفر میں ہیں، اگرچہ ہم ان کو کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ بائبل کہتی ہے جب تم کو ملامت کی جائے تو بے دل نہ ہو، لیکن اے باپ میری دعا ہے کہ کلام کی ملامت مجھے بھی اسی شدت کے ساتھ کاٹے جیسے وہ دوسروں کو کاٹتی ہے، اور اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک طریقے سے اسے سمجھ جائے۔ میری دعا ہے کہ اب تو ان کو برکت دے، بخش دے خداوند، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مانگا کہ ہم سب کچھ سوچ سمجھ کے مانگے، اس لیے کہ ہم کوئی غلط چیز مانگنا نہیں چاہتے۔ ہم کوئی ایسی چیز مانگنا نہیں چاہتے جس میں محض لفظوں کی خوبصورتی ہو، کیونکہ ہم تیرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میری التجا ہے کہ ہمارے اس بھائی کو برکت دے جس نے آج رات کے لیے اپنا دروازہ میری خاطر کھولا۔ میری یہ دعا ہے کہ اس کی کلیسیا کو اور اس کے ہر ممبر کو برکت دے۔ بس خداون یہ بخش دے کہ یہ جگہ روشنی کا مینار بن جائے، ایسی جگہ جہاں خدا کی نعمتوں کا بہاؤ ہو اور ہر چیز روانی کے ساتھ چلتی رہے۔ یہاں موجود تمام مخادموں اور ان کی کلیسیاؤں کو برکت دے، بخش دے کہ ایسا جھٹکا آئے یا توت کے درخت سے ایسی آواز آئے کہ خدا کا روح فینکس کو پار کر جائے اور کلیسیاؤں میں رفاقت پیدا ہو کر بڑی بیداری آ جائے، اور خدا کے جلال کے باعث خادم خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، لیکن جب مقدسین سپیر کے وقت اکٹھے ہو روتے اور دعا کرتے اور گواہیاں دیتے ہوئے اور پیغام پیش کرتے ہوئے، تو روح در حقیقت انڈیل آ جائے اور سننے کے لیے سارا شہر آ جائے۔ اب یہ بخش دے خداوند، ہمارے درمیان بیماروں کو شفا دے۔ اے باپ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے انہیں الہی رہائی عطا کر۔ اب جبکہ ہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اگرچہ یہاں کوئی اٹھ کر مذبح پر آنے کی خواہش رکھتا ہو، اور جبکہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا گیت، اچھا اور پرانا انجیل کا گیت گنگنائیں، ہم اس گیت کو گنگناتے ہیں، اور اس دوران جو کوئی بھی ہم سے دعا کروانا چاہتا ہو اور زیادہ گہرے تجربے کے لیے رول کس کو حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہو، یا اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور تقدیس حاصل نہیں کی، یا جو کچھ بھی آپ کا مقصد ہے، تو ہم دعا کر کے خوشی محسوس کریں گے جبکہ ہم یہ گیت گنگنائیں گے، مجھے اس سے محبت ہے، اور اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آئیں اب اس کے کلام کی تعظیم کریں۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ پہلے اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور کلوری کی سولی پر میری نجات خریدی۔ جب لوگ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ لے لے۔ ٹھیک ہے بہن جی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے، ہم مسئلہ پر آ جائیں جو اس وقت آنا چاہتے ہیں، ابھی آ جائیں، مجھ سے اور کلوری کی سولی پر میری نجات خریدی۔ یہ چھوٹے بالوں والی بہنیں یہاں آ کر خدا کے آگے عید کیوں نہیں کرتی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے دوبارہ بائبل پڑھوں؟ ٹھیک ہے، آپ آ کر کیوں نہیں کہتی، خداوند میں سب باتوں میں درست ہونا چاہتی ہوں، میں درست آغاز کرنا چاہتی ہوں، میں درست شارہ پر چلنا چاہتی ہوں اور قائم رہنا چاہتی ہوں، خداوند میں آج رات تیرے ساتھ عہد کرتی ہوں، اب میں اپنے بالوں کو لمبا ہونے دوں گی۔ بائبل کہتی ہے مرد کے لیے لمبے بال رکھنا شرم کی بات ہے، کیونکہ وہ عورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ خدا نے عہد کیے تھے ایک آدم کے ساتھ اور ایک ہوا کے ساتھ، اس نے انہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے، وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، وہ ہمیشہ سے دونوں مختلف تھے۔ بائبل میں آخر تک دو قسم کے عہد قائم ہیں۔ کبھی میں کسی رات اس دور عہد پر پیغام پیش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ او میرے عزیزو، یہ بہت بڑا فرق ہے، حتیٰ کہ یہ شادی اور طلاق کے مقدمہ میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ صرف اس سچائی کو جان لیں تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا، یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر وہی بات، ہم ابھی یقین دہانی کر لیں، کیا آپ آگے نہیں آئیں گے؟ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیا آپ کو رول کچھ کی ضرورت ہے تو آئیں اور یہاں کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے پیار کیا۔ और क्या आप खुदा के साथ ज्यादा करीब होकर चलना चाहते हैं? अरे अहद करें, उसके साथ खड़े रहें और कायम रहें। जब तक आप अहद पर अमल न करें, उसके करने का कोई फायदा नहीं। आप आकर अहद बांध सकते हैं, खुदा इसे पूरा करेगा। आप फक्त अपने अहद पर कायम रहें। अब मैं अपने खादम भाइयों से कहूंगा कि वो यहाँ आकर इन बेशकीमत लोगों के साथ खड़े हो जाए, और जब हम दुआ करते हैं तो इनके गिर्द मौजूद रहें। ठीक यहाँ, मैं हर एक से कह रहा हूँ, और जब हम यहाँ मौजूद हैं तो उनकी जरूरतों के बारे में पूछें। अब हर शख्स पूरे दिल से ताजीम करे। अब जब ये दुआ मांगी जाती है तो आप हकीकी ताजीम अपने दिल में रखें और खुदा आपको इज्जत बख्शेगा। आप यहाँ आकर इन लोगों के पीछे और इर्द गिर्द खड़े हो जाए जो दुआ के लिए खड़े हैं। कलवरी की सूली पर जब तक खादम दोनों तरफ जमा हो रहे हैं तो हम गाते हैं, मुझे उससे प्यार है मुझे। अब मैं तमाम जमातों के खादमों को एक ही जगह में देखना पसंद करूंगा, यानी उस खून के नीचे, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया। और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीदी। मेरे खुदाया, भाइयों आगे आकर अपनी शख्सियत के साथ खड़े हो जाएं और इन पर हाथ रखें और इनसे पूछें कि वो खुदा से क्या चाहते हैं। क्या ये हैरत अंगेज वक्त नहीं है? आप जानते हैं कि मैं यहाँ मुख्तलिफ कलीसियों के खादमों को बाहम इकट्ठे खड़े हुए देख रहा हूँ। जो बीमार बहनें थी वो चार पहियों से उठकर जा चुकी है। खुदावंद की तारीफ हो, हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो खुदावंद के नाम से उठकर जा चुकी है। अब आए तमाम सामीन अपने सरों को झुका लें। अब आप में से हर एक अपने दिल में खुदा के साथ यूं बात करें, जैसे आप मेरे साथ करते हैं। जैसे आप आकर कहते हैं, भाई ब्रहनम, मैं, अगर आपने कोई गलती की होती है तो आप कहते हैं, भाई ब्रहनम, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने ये गलती की, क्या आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे? भाई ब्रहनम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब आपके खिलाफ ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। अब आप मुझसे और मेरे नाम की बजाय खुदावन यस्सु मसीह का नाम इस्तेमाल करें। अगर आपको शिफा की जरूरत है, जैसा कि अगर आप आते हैं और मुझसे कहते हैं, भाई ब्रहनम, मैं गरीब हूँ और आज रात मेरे पास खाने को कुछ नहीं, और हाँ, मैं जानता हूँ अगर आपके पास $1 हो तो आप मुझे दे दें। अब देखें, आप खुदा को यूँ क्यों नहीं कह सकते? अगरचे आपको शिफा की जरूरत है, उसके पास है, समझे? आप मुझसे तो कह देते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन क्या आप उससे नहीं कह सकते अगर तेरे पास हो तो उसके पास है, समझे? बस जिस तरह आप मुझसे कहते हैं, भाई ब्रहनम, क्या आप मुझे $1 देंगे? मुझे खाने के लिए कुछ लेना है, आप ये जानते हैं, इसके लिए बिला शुबा मैं ऐसा करूंगा। अगर मेरे पास डॉलर होगा तो मैं किसी भी वक्त आपको दे सकता हूँ। अगर मैं ना दूं तो मेरा दिल सख्त है और मैं जालिम हूँ और गुनाहगार आदमी हूँ। और अगर आप जैसे शख्स की तरह मेरा दिल अच्छा है तो मैं ऐसा करूँगा, तो फिर खुदा क्या कुछ ना करेगा? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल कुछ क्यों ना देगा? अगर आप उससे मछली मांगेंगे तो क्या वो सांप देगा? और अगर आप उससे रोटी मांगेंगे तो क्या वो पत्थर देगा? यकीनन नहीं। बस अगर आप इसी तरीके से ईमान रखते हुए खुदा से कुछ मांगेंगे तो आप मुझसे कोई चीज मांगने की निस्बत उससे कई लाखों गुना तेजी से हासिल कर लेंगे। और आप जानते हैं कि मैं तो सिर्फ आपकी मदद करूंगा, मैं हर मुमकिन काम करने की कोशिश करूंगा। इन भाइयों में से हर एक कोई भी ऐसा ही करेगा। हम आपकी मदद करने के लिए अपनी जेब से हर सिक्का निकाल देंगे, जो कुछ भी हमसे हो सकेगा। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसका आपके ईमान के साथ ताल्लुक है। अब आप ईमान रखें, जब हम दुआ करेंगे तो ये आपको मिलेगा। आप भी दुआ करें, सामीन दुआ करें, और मेरा ईमान है खुदा उतरेगा और हमारी दुआओं को इज्जत देगा। और जिस लम्हे आप महसूस करें कि आपकी मुरादें पूरी हो गई हैं और खुदा ने आपको दुआ का जवाब दे दिया है, तो फिर एक अहद करें कि खुदावंद, मैंने ये गलती की है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हाथ उठाकर वादा करता हूं कि अब मजीद ऐसा नहीं करूंगा। खुदा आपके अल्फाज के मुताबिक आपको लेगा। आप इस तरह से ईमान रखें। और ये इसी तरह हो जाएगा। बस फिर अपना हाथ उठाकर उसका शुक्रिया अदा करें। खुदावंद, मैंने अहद किया है, मैं जानता हूँ ये तेरा वादा है और तूने इसका जवाब देने का वादा किया है और तू नाकाम नहीं हो सकता। आसमानी बाप, हम तेरे खादम इन लोगों के गिर्द खड़े हैं जो तेरी बरकत और तवज्जो के तलबगार बनकर आगे आए हैं। ऐ बाप, ये लोग शाम के वक्त की रोशनी के पैगाम के जीते हुए इनाम हैं। खुदावन, इनमें से बहुत से इकरार कर रहे हैं, इनमें से कुछ मायूस कुन हद तक जरूरतमंद है। ऐ खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ कि इनमें से किसी को रद्द ना करना, इसलिए कि तू अपने कलाम में कायम रहता है। खुदावन, मैं तुझे तेरा कलाम याद दिलाता हूँ, जैसे पत्रस और दूसरे शागिर्दों ने इमाल 4 में दुआ करते हुए किया। खुदावन, अपने कलाम को याद कर। कौमें क्यों गजबनाक होती हैं और लोग बातल चीज का तसव्वुर क्यों करते हैं? अब ऐ बाप, हम तेरे कलाम को लाते हैं। तूने फरमाया था, जो मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज नहीं निकाल दूंगा। जो मेरे कलाम को सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म ना होगा बल्कि वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हो, हम अपनी दरख्वास्तें खुदा के आगे पेश करेंगे तो वो हमें जवाब देगा, वो कसरत से देगा। जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो उसका इकरार करके उसे तरक करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। मैं लोगों की गलतियों का इकरार करता हूँ, मैं खुद अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ, मैं रहम की दरख्वास्त करता हूँ, मैं शिफा मांगता हूँ, मैं फजल मांगता हूँ। खुदावंद, मैं ये मांगता हूँ कि तू अपने पाक रूह को अंडेल, ताकि इन मुंतजर लोगों की जिंदगियां खुदा के सांचे में ढलकर तब्दील हो जाए और खुदा के बेटे की सूरत हासिल कर ले, ताकि वो रूह जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया था इनके बदनों के अंदर आकर इन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बना दे। खुदावंद, ये बख्श दे। हमारा ईमान है कि तू मौजूद है, हमारा ईमान है कि तू अपने कलाम को इज्जत बख्शेगा, हमारा ईमान है कि तू कलाम के असर को इज्जत बख्शेगा। अब अपनी बरकात को इन लोगों पर नाजिल कर जो इस इंतजार में है कि तेरी हजूरी इस मजबा पर इन लोगों पर आ जाए, यीशु मसीह के नाम में। अब अगर आप ईमान रखते हैं और यकीन करते हैं कि आपका मकसद आपको मिल गया है, तो अपना हाथ खुदा की तरफ बुलंद करें। अगर आप इसे ईमान की दुआ समझकर कबूल करते हैं और अहद करते हैं कि आप खुदा की तरफ आ गए हैं, तो अपना हाथ बुलंद करें और सामीन खड़े हो जाएं। बल्कि हर एक शख्स जो खुदा के साथ अहद करना चाहता है खड़ा हो जाए और कहे, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, मैं इसे कबूल करता हूँ, मैं इसका यकीन करता हूँ। अपने हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करें और ये पूरा हो जाएगा। खुदा की तारीफ हो। खुदावंद यीशु, तेरी भलाई और रहम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुदावंद उन सब कामों के लिए जो तूने हमारे लिए किए हैं। हम यीशु मसीह के वसीले तेरी तारीफ करते हैं।